एंड टू डिलीवर, लेकिन कर लो।
इंशाल्लाह
कोई
सर,
किसी ऐसी जगह
बहुत
पे कोई लेक्चर्स हो रहे हैं ना जो बीच में, कोई
हाँ
जरा एजुकेशनल हो, लिसनर्स ना आए जिसमें
जी
कुरान स्टूडेंट्स हैं, कोई मदरसे वाले, कोई कुरान को स्कूल जिसमें स्टूडेंट टीचर्स हों, यानी जो हम जैसे नए भाई के बहुत हम अच्छे काम कर रहे हैं ना वो सुने। नए लोगों को नहीं ये टॉपिक सुनाना चाहिए।
नहीं कर लेंगे रात में करना है
इंशाल्लाह।
सैटरडे क्लास में से शाम का है, हम उनसे ले ले परमिशन, सैटरडे क्लास में कर लेते हैं
इंशाल्लाह।
जी दिस ये टॉपिक हमें तोड़ के रख देगा, फिर ऐसे हो जाएंगे, फिर अल्लाह की नजरों में इंशाल्लाह तआला हम उठेंगे इंशाल्लाह। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक और भी टॉपिक है सर, ये भी
बताएं जी, बताएं आप।
फी सबीलिल्लाह, दिस इज अ होल सोल फी सबीलिल्लाह पे अगर हम करें ना तो हमारी जिंदगी पूरी मतलब लिल्लाह बिल्लाह इन फिल्लाह में निकल जाए इंशाल्लाह।
सच है, ये इसमें कोई शक नहीं है। आप रख ये बेशक सारा और ऑल क्राउड्स कैन डू कम, क्योंकि आज हमारे यहाँ फीस भी लिल्ला का कॉन्सेप्ट क्या है, सदके का बकरा, और फीस भी लिल्ला क्या, टूटी भी कुर्सी, और हमारे यहाँ फीस भी लिल्ला वो फर्नीचर जो दिल से उतर गया, या वो बर्तन जो अब यहाँ नहीं, अब नए ले लिए, जो फीस भी लिल्ला दे हो ना, ये इतनी बुरी बात है कि वाकई सोचे ना, मैं आपको गिफ्ट दूँ और मैं कहूँ दे दो जो नई काम का दे दूँ आपको, मैं दूं, और अल्लाह के लिए हम करें तो क्या करते हैं, सोचें हम जरा। यानी ये हकीकत है कि वाकई वही कल से ही जो पहले भी बात हुई, कल दोबारा भी एक जगह हुई थी कि देना नहीं है, बोले लगाना है। जब तक हम लगाएंगे नहीं, दीन के पौधे पे बहार नहीं आएगी, वरना तो वो हमारा भी सलीहा, मेरा तो हिस्सा डाल ही गया ना, तो हिस्सा उतना डाल के जिससे आप मुतमईन हो गए वो काफ़ी है, या जो डिज़र्विंग चीज़ है वो है ना। तो उसमें हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट बदले हुए हैं। अभी तो आज आपने जब इबादत टच करनी है तो आपको अपना अंदाज़ा होगा इसका इंशाल्लाह। रेडी है जी, कर लीजिए। वो दे दें, हाँ हाँ देखिए, यसलूना कमाज युनफिकून, कुरान में दो जगह बड़ा है ना, सूरह बकरा में ही है दोनों, और दोनों दफ़ा सवाल अबू सहाबा की तरफ से ही था। पहली दफ़ा क्या कहा, कुल लफ, ये बाद में कहा, बल्कि जो तरतीब से आता है उसमें क्या कहा कि क्या खर्च करें, ये छोड़ दो, ये देखो किसको करें, फलिल वालिदैन वल अक्रबीन, हाँ। लेकिन दूसरी दफ़ा क्या कहा, अफ, जो तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा दे दो। यही दो हालात हैं आज भी, दोनों ही सत खर्च है। कभी हालात ऐसे होते हैं कि आपको ज़रूरत है देने की, ठीक है, तब अफ दे दे, यानी आप अपना ज़रूरत यानी कुछ भी कर लें जो आपका दिल करे। लेकिन कभी कभी ऐसे हालात होते हैं कि बस इतना अफ रख लो जिससे दो वक्त की रोटी चले। अब जिसको नहीं समझ आई उसको इंशाल्लाह ये मौजू हम इस सीरीज़ में भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। चलिए आवाज़ चेक कर ले, इसको मेरे से आवाज़ दें, जिसने मेरे से किया था तो बहुत अच्छी आवाज़ है, पूछ लीजिए उनसे, एक बिल्कुल नॉर्मल है,
बिल्कुल नॉर्मल है,
कम तो नहीं है, ठीक है।
विजय के स्टूडेंट्स बता दीजिए आवाज़ बिल्कुल ठीक है आप लोगों के लिए।
हाँ जी नॉर्मल होनी चाहिए। अतीक जी ये लगाएंगे इतने है नीचे, नहीं तो बाद में लगा देंगे। चलिए जी इंशाल्लाह ताला चलते हैं आज अल्लाह की रहमत से। बहुत ही बिग 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 टारगेट है हमारे पास, जो अल्लाह ने करवा दिया हम उस पर भी राज़ी होंगे इंशाल्लाह। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रब्बिश्रहली सदरी व यस्सिरली अम्री वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली, रब्बी यस्सिर वला तुय्यसिर वतम्मिम बिल खैर। अल्लाह ताला की तौफीक और उसकी रहमत से हम इस्लाम ए टू ज़ी में आज इबादात का टॉपिक शुरू करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग रिकैप्स कर चुके कि अभी तक हमने इस्लाम में से हकूकुल्ला और हकूकुल्ला में से दो चीज़ों में से एक चीज़ इबादात मुकम्मल की है, सॉरी अल्लाह हकूकुल्ला, इधर मेरे पेपर से और वो पेज भी चाहिए मुझे ना, और हमने उसमें किस तरीके से किया था कि अल्लाह ताला ने हमें, हाँ जी ठीक है एक मिनट जी, याद है पहले दिन की शीट, सबसे ऊपर इस्लाम, इस्लाम के दो हिस्से हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद, हकूकुल्लाह की फिर दो आगे चीज़ें, नंबर एक अकायद और नंबर दो इबादात, और हकूकुल इबाद के दो हिस्से, एक अखलाकियात और दूसरे मामलात, ठीक है। हमने अभी तक इस हिस्से की जो सीढ़ियां तय की हैं अल्लाह के हुक्म से वो अकीदे की हैं। आज अगर आपके सामने जो शीट है उसको खोल के देख लें, आपके लिए आज दोबारा ये शीट दोहरा दी गई है थोड़ी सी सहूलत के साथ। और वो क्या है कि आज हम इंशाल्लाह हकूकुल्लाह का दूसरा हिस्सा लिखिए, और जो मैं कह रही हूँ मुझे कहते हुए भी, बोलते हुए भी, और आपको सुनते हुए भी इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि ये किन के राइट्स की बात है। आज के दौर में वीमेन राइट्स, ह्यूमन राइट्स, चिल्ड्रन राइट्स, एटमॉस्फेयर राइट्स, एनिमल राइट्स, कितने राइट्स के धूम मच चुके हुए, लेकिन ऐसे लोगों के पास अल्लाह के राइट, गॉड्स राइट है ही नहीं सिरे से। तो याद रखिएगा कि अल्लाह सुबहाना ताला को उसका हक दिए बगैर हम बंदों के हक नहीं दे सकते। तो अल्लाह सुबहाना ताला के हकूक में से एक आज बहुत अहम हिस्सा हम पढ़ने वाले हैं इबादात का। आज की शीट अगर आप देखें, किसी की वाइब्रेशन है फ़ोन की, उसको बंद कर दीजिए। ये जी सारे फ़ोन बैग्स के अंदर, और नहीं तो फिर कल से रिसेप्शन पे रुकेंगे, ठीक है। ये देखिए इबादात को बड़ा करके, इसके अंदर नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात है ना। इस पूरे वीक में इंशाल्लाह हम इन मौजूआत पे बात करेंगे। और हकीकत क्या है कि इबादत क्या है? आज अगर आप शीट्स अपनी खोल लें, मुझे भी आज की शीट दे दीजिए। आपके सामने शीट्स हैं जी, दिखाइए। ओके, अब आप देखिए कि अगर लफ्ज़ इबादत को समझना हो तो या का नाबुदू व या का नस्ताइन हम शुरू से सीखते आए, और दिन में कम अज़ कम 17 बार पढ़ते हैं, और अगर शऊर से पढ़ा होता तो आज ऐसी उम्मत ना होती, आज ऐसी उम्मत ना होती। ये दो जुमलों का जवाब है इस बात का कि हमने अल्लाह की इबादत का हक ना समझा, ना अल्लाह की इबादत को उस तरह से संजीदगी से लिया। तो अल्लाह ताला के हाँ बंदे का अमल कौन सा कबूल है जो हकीकत में सिर्फ उसी के लिए और उसी की मर्ज़ी के मुताबिक होता है। हमने पिछले हिस्से में, अब मैं यहाँ थोड़ा सा आपको जोड़ना चाह रही हूँ, फिर इंशाल्लाह आज की वर्कशीट आप शुरू करेंगे। और वो क्या है कि हमने तौहीद की 3 किस्में पढ़ी थी ना, ज़रा दोहराएं आप सब, अब मैं नहीं बोलूँगी, अब आप बड़े हो गए हैं। तौहीद की 3 किस्मों में से पहली किस्म क्या है? हाथ खड़ा करें जी, आप इधर शायस्ता। शाबाश, तौहीद रबूबियत पढ़ी थी, वो बात वाज़े हो गई, अल्लाह रब है। दूसरी किस्म पीछे से, सभी का हक है, आप में से हर एक का हक है, बल्कि जगह बदलें, आप अगले वीक से इनके जगह साइन करें, चेंज करें, आप सारे स्विच करें जी। पीछे से आप सेकंड रो में फर्स्ट। तौहीद अलूहियत पढ़ी थी, तौहीद अलूहियत क्या होती है जी? जी आप बताइए। देखिए तौहीद अलूहियत ही की एक्सटेंशन आज हम पढ़ने लगे हैं। तौहीद अलूहियत क्या है कि इबादत का हक सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का है। बात वाज़े, यानी इस वक्त आप देखिए कि अल्लाह के हकूक में से एक हक कि अल्लाह को के लिए तौहीद अलूहियत का अकीदा रखा जाए, इसी को तौहीद इबादत भी कहते हैं। लिख लें इसी पेज पे, बेशक लिख लें अपने नोट्स में, लिख लीजिए, तौहीद अलूहियत को ही तौहीद इबादत कहते हैं। और अगर आपको याद हो कि हमने तौहीद की 3 अकसाम में से तौहीद रबूबियत की यहाँ 15 अकसाम नोट की थी कि रब होने से क्या मुराद है, आज हम पूरी जो बहस पढ़ेंगे एला होने से क्या मुराद है। अगर ये समझ आ जाए ना, ये है समंदर जिसको कूजे में नहीं, ये छोटी सी अकल, छोटी सी टोकरी है, टोपी है हमारे सर पे अल्लाह ने एक डाली हुई, जिसको अल्लाह के इलाह होने का मतलब समझ आ गया, उसकी इबादत रस्मी नहीं रहेगी, रिवाजी नहीं रहेगी, बस इबादत बराए इबादत नहीं रहेगी। तौहीद अलूहियत को ही तौहीद इबादत कहते हैं, यानी इबादत और बंदगी का मुस्तहक फ़क्त अल्लाह है। अगर इस जुमले पे अगर आज मैं और आप अपने लाइफस्टाइल को ही सिर्फ देख लें, अपने सोशल सेटअप को देख लें, अपने फैमिली सेटअप को देख लें, अपने मुआशरों में कमाने खाने के ढंगों को देख लें, पहनने ओढ़ने के ढंग और तरीकों को देख लें, तो हमारे सर शर्म से झुक जाएं, हम परेशान हो जाएं कि क्या वाकई हम मुसलमान हैं? हम वाकई वो मुसलमान हैं जिनको हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन का खिताब मिला था क्या हमारे पास वही इस्लाम में आज कि अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुम अल इस्लाम दीना। बिलीव मी, आज सारी कमीज़ पे है और मैं इसमें ज़िम्मेदार दीन की दावत देने वालों और दावत को आगे पहुंचाने वालों को भी लूंगी। देखिए, दो लोग होते हैं, एक होता है उस्ताद। उस्ताद बैठता है किसी दरसगाह में, मदरसा में, और वो सिखाता है। जैसे आजकल आप और मैं इस्लाम ए टू जी को समझने की कोशिश में, इसमें तो हर मौजू आता है, इसमें तो स्टूडेंट्स का हक बनता है कि उसको एक एक चीज़ दी जाए। लेकिन मैं बात करूँगी पब्लिक दरसों की, वो लोग जो सिर्फ टेस्ट चेंज करने को या चले डू समथिंग सही, कुछ तो कीजिए, कुछ होने से कुछ ना होना, ना होने से होना तो बेहतर है। ऐसे लोगों को कभी भी अगला टॉपिक नहीं देना चाहिए। यानी मैंने पिछले साल, मेरे 5-6 माह पहले की याद है मुझे कोई बात, मैंने एक दर्स में ये बात कही थी कि अगर आज से फ्रॉम टुडे सारे दीनी मुबल्लिग, सारे टीचर, स्कॉलर, स्पीकर, जो भी आप उनके नाम रखें, इस बात पे लग जाएं हमने किसी दूसरे मौजू पे बात नहीं करनी, अनलेस हमारे इर्द गिर्द के लोग या हमारे ऑडियंस को अकीदा और इबादत ना समझ आ जाए, अल्लाह का हक समझ ना आ जाए। ये इधर उधर के इश्यूज में उलझा कर लोगों की अभी तक इबादत, क्या छोड़ दीजिए, तौहीद ही ठीक नहीं है। कितनों को शुरूत ला इलाहा आती थी, कितनों को तौहीद की ये अकसाम पता थी। तो ज़रूरत है इस बात की कि हम सारे अपने आप को इस सिरे से रीस्केड्यूल करें। हम सबको भी करना चाहिए। सबसे ज़्यादा नेमत अब हमारे पास है और सबसे बड़ा हक हमारा है। तो आज की वर्कशीट का पहला पेज, पहला सवाल आप देख लीजिए, इबादत किसे कहते हैं, इबादत क्या होती हैं। अगर आप इस चीज़ को सामने रख लें तो इबादत जो है हकीकत में अल्लाह के इस हक को मानने का नाम है कि अल्लाह हमारा इलाह है, फ़क्त और फ़क्त उसी को, और वो हस्ती है जिसको मानना है। नंबर एक, अब जो दूसरे मैं लिखा रही हूँ आपने इन ब्लॉक्स में लिखना है जो आपके सामने शीट्स में मौजूद हैं, इबादत अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करने, कॉमा लगाइए, और इसकी मना की हुई चीज़ों से रुकने का नाम है। बिलीव में अगर मेरे पास वक्त होता ना तो मैं कम से कम 1 मिनट खामोश रहती और आपको कहती आप सोचें, लेकिन अब 3 सेकंड सोचिए मैंने क्या कहा आपको। और अगर इस पहचान को समझ गए ना, इस अल्लाह, इस आपने समझ लिया है तारीफ को, तो अब इसकी रोशनी में कितने लोग आज माशरे में आबिद हैं और कितनी आबिदा हैं, क्या सच बताएं, हाथ खड़ा करा के बताएं, हम इबादत गुजार किसको कहते हैं जो अल्लाह के हुक्मों पे अमल करे और अल्लाह के मना किए हुए को छोड़ दे। नहीं, हम तो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वाले को इबादत गुजार कहते हैं, रोज़ों के पाबंद, सोमो सलात के पाबंद। यानी आज ये है वो टर्निंग पॉइंट जहाँ से उम्मत भटकी थी। हर वक्त सोचती रहती हूँ आखिर वो कौन सा मोड़ था जहाँ से रॉन्ग एग्जिट लिया था, वो ये है। पूरे यकीन से कह सकती हूँ आज के मुसलमान जब से बिगड़ने शुरू हुए, बिगाड़ की पहली सूरत ये थी कि बेसिक्स जो अल्लाह ताला ने हमें दिए हुए ना, वहाँ से हमारा रुख पलटा और हम साइड इश्यूज़ में खो गए। यहीं से उम्मत तफरकों में बटी, यहाँ से फ़िरके वजूद में आए, यहाँ से नस्बतें वजूद में आईं, यहाँ से मोहब्बतों और नफ़रतों का मरकज़ शख्सियात या इदारे या नाम या गिरोह या फ़िरके हो गए। कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फ़रीहून, एक जगह फारहीन भी आता है, हर बंदा अपने ही टुकड़े पे खुश फिर रहा है कि मेरे से बड़ा कौन होगा। तो याद रखिए दीन की असल हकीकत भी यही है। इबादत एक बहुत जामे चीज़ है, इसमें तमाम ज़ाहरी और बातनी अकवाल और आमाल शामिल हैं जिनको अल्लाह पसंद करता है और जिनसे राज़ी होता है। चलिए इसको ज़रा सा जज्ब करें तो फिर मैं अगली डायमेंशन पर जाऊँ। सब मिलकर बोले इतनी आवाज़ से कि ये कमरे में एक एक कोने में ये आपकी आवाज़ आ जाए, इबादत किसे कहते हैं। सब बोले, मिल के बोले, जी समझ आ रही है। तो इसी का फिर क्या नाम बन गया दूसरा, इतात, सबमिशन। इबादत इज़ इक्वल टू इतात। मैंने हमेशा सूरत फातिहा की तफसीर में या का नाबुदू में 3 मानी सिखाए हैं इबादत के, जिसमें एक परस्तिश और बंदगी के मानों में और इसमें एक इताअत है। ठीक है, चलिए अब सेकंड डायमेंशन ऑफ इबादत लिखिए। इबादत इन तमाम चीज़ों से बरात भी है। बरात किसको कहते हैं? शाबाश, बरातु मिन अल्लाही, सूरह तौबा की पहली आयत, बेजारी। तो मैं बेजारी भी बोल देती हूँ। इबादत इन तमाम चीज़ों से बेजारी भी है जो अल्लाह को नापसंद है और जिनसे वो राज़ी नहीं होता। इमाम इब्ने तैमिया रहमाहुल्लाह फरमाते हैं, इबादत दर हकीकत अल्लाह ताला की इताअत का नाम है, और अल्लाह ताला की इताअत का तरीका ये है कि अल्लाह ने अम्बिया और मुरसलीन को जो अहकाम दिए हैं इनकी ताबेदारी की जाए। चलिए, क्या समझ आया? दिल नहीं कर आगे जाने को, वो तो इसमें आया ही नहीं जो हमने सोचा हुआ लफ्ज़ इबादत के साथ, एक ख़ास गेटअप, इबादत गुजार नहीं। पहली चीज़ क्या थी? जिस जो करने को कहा वो करो और जिससे रुकने को कहा रुको। आज आप सब ने अपने पास घर में ये जो इबादत के मफहूम बता रही है ना, 10 दफ़ा ये दोनों जुमले लिख के अपने पास रखते जाइए, आपके असाइनमेंट का हिस्सा बनेंगे। यानी ये इबादत आपने अपने हाथों से भी लिखना है, ये फिर दूसरी दफ़ा अपने दिल से लिखना है, फिर तीसरी दफ़ा गौर व फिक्र करना है, फिर उसको देख देख के लिखना है। यानी आपके 5 लिम्स जो है ना, इस लफ्ज़ को रट लें कि इबादत नाम है अल्लाह की इताअत, किस तरीके से जिसके करने का हुक्म दिया वो करना है, जिससे रुकने का रुकना है। और आज आपको उस सवाल का जवाब मिलेगा कि सहाबा को क्यों नहीं कहना पड़ता था, यानी नबी सल्लम को क्यों नहीं कहना पड़ता था सहाबा से कि नमाज़ पढ़ो, रोज़ा रखो, फी सबीलिल्लाह निकलो, क्योंकि उनको इबादत का मानी समझ आ गया था, हमें नहीं आया। चलिए, अब दूसरा जो मैंने कहा है तरीका, दूसरी किस्म, वो सब मिलके पढ़े, बोले इबादत क्या है? चलिए, अब 3 सेकंड खुद सोचे, क्या मैं आबिदा हूँ? क्या मैं उन तमाम चीज़ों से बेजार हूँ जो अल्लाह को नहीं पसंद? और इसका ऑपोजिट भी सोचिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी शीट में लिखा हुआ है, इबादत के कितने अरकान हैं? इबादत के 3 बुनियादी अरकान हैं। नंबर 1, कमाल अल हुब, अल्लाह ताला की मुकम्मल या कामिल मोहब्बत। अल्लाह ताला की कामिल मोहब्बत इबादत है। सूरत बकरा 165, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बल लिल्लाह। तो अल्लाह से मोहब्बत करने वाला मुस्तकिल इबादत की हालत में होता है। ये जुमला लिख लें, शायद आपको कहीं काम आ जाए। देखिए, सारा दिन सारा वक्त में आप नमाज नहीं पढ़ सकते ना। यहाँ से आप फिर आज फिर उन सारी चीज़ों को देखें जो हमारे माशरे के मिसकॉन्सेप्शंस हैं। जब हम ये लफ्ज़ पढ़ते हैं ना कि अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया, तो हम कहते हैं हाय सारा दिन नमाज पढ़ते रहें, फिर हर रोज़ ही रोज़ा रख ले। नहीं, कौन सी इबादत की कैफियत है जो हर वक्त कर सकते हैं? वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बल लिल्लाह, मोहब्बत। जिक्र भी करने की ज़रूरत नहीं है, कहें आई लव माई अल्लाह, आई लव माई गॉड, आई लव माई क्रिएटर, आई लव अर रहमान, आई लव अल वदूद, तो आप इबादत में 24 घंटे के आबिद। आप तो सोते में अल्लाह ताला तो कहते हैं इनकी तो करवटों में भी अल्लाह की मोहब्बत है। ये रात को उठाती कौन सी मोहब्बत है? तजाफ़ अजनूब अनिल मदाजी, ये कौन सी मोहब्बत है? और बिस्तरों से वो अपने दिल को लगाते नहीं है, ये अल्लाह की मोहब्बत है। दूसरा रुकन है अल्लाह से कामिल उम्मीद, पूरी उम्मीदें अल्लाह से। बनी इसराइल 57, सारी उम्मीदों की डोरियां काटोगे तो अल्लाह की मदद आएगी। आज सोचिए, इस नाम पे फिर ये रुकन है आज उम्मत में? हमारा हाल तो वो शायर का है ना, क्या उसने कहा कि बुतों से तुझको उम्मीदी, अल्लाह से ना उम्मीदियाँ। हम तो अल्लाह के पास तब जाते हैं जब सारे छोड़ दें, हम कहते हैं अब सिर्फ अल्लाह ही मेरा सहारा है। तो अल्लाह आपका तब भी था जब सारे थे। ये जो जुमला हम आखिर में बोलते हैं ना, इसको पहले बोलिए, ये रुकन है इबादत का। तीसरी चीज़, अल्लाह का कामिल खौफ। बनी इसराइल 57, क्या पता चला कि अल्लाह का खौफ ये भी इबादत है। जो अल्लाह से डरने वाले हैं ना, वो मुस्तकिल आबिद है। जो अल्लाह से पूर उम्मीद है ना, बस मेरे हालात ठीक हुए, बस ठीक है, ला तकना तुम्हें रहमतिल्ला, ठीक हो जाऊंगा, बीमारी ख़त्म हो जाएगी, ये तंगी ख़त्म हो जाएगी, ये दुख बच्चे का ख़त्म हो जाएगा, ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी, बस समझिए आप पूरी इबादत गुजार हैं। तो कमाल अल खुब, कमाल जुल, आजजी की भी इंतहा, मोहब्बत की भी इंतहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इबादत की किस्में कितनी हैं? अहले इल्म के नज़दीक इबादत इबादत की 3 किस्में हैं। अब ये एक बांट है, जिसको आप बांटेंगे तो आपके लिए इबादत को समझना आसान हो जाएगा। सबसे पहले है कल्बी इबादत, कल्ब की इबादत, ورشپ بائی ہارٹ، اس سے مراد وہ عبادات جس میں جس کا تعلق براہ راست دل سے ہوتا ہے. جیسے مثلا آپ ذرا سوچیں میں کیا بولوں گی، یعنی دل کے ساتھ کون سی عبادت ہوتی ہے؟ نمبر ایک ایمان، اللہ پر ایمان آپ کی دل کی عبادت ہے، یقین، محبت، خوف، خشیت، رجا، رغبت، توبہ، انابت، توکل، شکر، صبر. آپ سمجھ آ رہا ہے یہ ڈوریاں کیسے جڑی ہوئی ہیں آپس میں؟ میں اس کو دیکھ رہی ہوں تو جڑوں میں سے اٹھ کے نا، یہ میں نے ابھی جملے جو بولے ہیں نا، لفظ جملے نہیں لفظ بولے، تو ان لفظوں سے میرے ذہن میں درخت کی تصویر آئی ہے، اور درخت کے نیچے جو جڑیں ہیں نا، ان جڑوں میں سے ایسے لائنیں کھنچتی ہوئی تنے تک جا رہی ہیں. پانی بھی تو جڑوں کے راستے اوپر جاتا ہے نا، نمکیات، منرل، سب کچھ. تو اس طرح دل سے محبت، یقین، خوف، خشیت، رجا، رغبت، توبہ، انابت کا پانی جڑوں کے راستے تنوں میں جاتا ہے تو عبادت اچھی ہو جاتی ہے. پھر کیوں نہ وہ نماز ہو جس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب نماز میں کھڑتے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ خشیت کے مارے ہنڈیا کھول رہی ہے، اور پھر کیوں نہ قوم للہ قانتین. اور یہاں سے اپنی اور اپنے بچوں کی نمازوں کو بھی ہم دیکھیں کہ آج ہماری نمازوں کا حال یہ کھوکھلا تنا کیوں ہے. کسی درخت کا ایک اسٹیچو بنا کے رکھ دیں تو کیا وہ ہرا ہوگا؟ اصلی جڑیں ہوں نیچے اور نقلی پودا ہو اوپر تو ٹکے گئی نہیں. اصلی جڑوں نے ایک دم نیچے سے تنا نکالنا ہے، ایک ایک کٹ کرے گا آپ کا نقلی تنا ادھر سے ہٹ جائے گا. لیکن پودا اصلی ہو نیچے سے جا کے جڑیں کاٹ دیں، ایک دو مہینے میں سارا درخت نیچے گر جائے گا. آج یہ ہوا ہوا ہے، اللہ کرے ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے. دوسری قسم ہے زبان کی عبادت. اس سے مراد عبادت کے وہ سارے کام ہیں جو انسان اپنی زبان کے ذریعے سے انجام دیتا ہے. آپ ذرا سا ذہن پہ بوجھ ڈالے، زبان سے کیا کر سکتے ہیں؟ نمبر ایک ذکر، دعا، خیر کی دعوت، نیکی کا حکم، اور برائی سے روکنا، اور کلو معروف ان صدقہ، ہر اچھی بات صدقہ ہے. تو زبان سے عبادت کے یہ کام ہے. تیسرا ہے اعضاء کی عبادت. پہلی کیا تھی؟ عبادت قلبی، دوسری تھی عبادت لسانی، اور تیسری تھی عبادت بالجوارح، لیمز کے ساتھ. اس سے مراد پھر وہ سارے ہی کام ہیں جو انسان اپنے اعضاء کے ذریعے انجام دیتا ہے. زیادہ تر عبادت کا تعلق اعضاء اور جوارح سے ہے. مثلا وہ عبادات جنہیں اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے، اللہ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال سے ہمیں ان کی ادائیگی کا جو صحیح پتہ چلا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ، قربانی، نذر، صدقہ، اعتکاف، جہاد، اسی طرح اسلامی سرحدوں کی پہرے داری، صلہ رحمی، یہ ساری عبادت ہے نا. کہہ لیجئے کہ نیکی کے کام اور وہ سارے کام جس کا ثبوت قرآن اور سنت میں ملتا ہے وہ سب عبادت میں ہے. تو بات کیا واضح ہو گئی کہ اعضاء کی عبادت ہے. اور پھر اس کے اندر یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا کہ زیادہ چیزیں ظاہر میں ہم ظاہری اعضاء سے کرتے ہیں نا. بس اگر آپ سے میں کہوں اٹھے نماز پڑھیں، آپ کہتے ہیں میں نے پڑھ لی ہے، میں نے دل میں یاد کر لیا تھا، یا دوسری بات ہے میں نے چپ کر کے نماز دل میں دہرا لی ہے، بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین، زبان سے بول دیا، تو کیا ہو جائے گی وہ نماز آپ کی؟ نماز کے لیے ایکشن، صلو کما رأیتمونی اصلی. بات واضح ہو گئی؟ تو پھر کیا پتہ چلا؟ نیکسٹ کوسچن، عبادت کی قبولیت کی شرائط کیا ہیں؟ اللہ کون سی عبادت قبول کرتا ہے اور کب نہیں؟ نمبر ایک، اللہ کی رضا کی خاطر انجام کر دیں. کوئی بھی کام، عمرہ، حج جیسا کام کیوں نہ ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو. نمبر دو، اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو سنت رسول کے مطابق انجام دیا جائے، یعنی نیکی بھی کرنی ہے لیکن طریقہ نبی کا بتایا ہوا. تیسری بات، ریاکاری، بدنیتی اور نمائش سے مکمل طور پر پرہیز کی جائے. کیا عبادت شرک بن سکتی ہے؟ نیکسٹ کوسچن، ایک جملے میں اس کا جواب ہے، بالکل. عبادت کے یہ سارے کام جو ابھی میں نے بولے بھی ہیں اور کچھ نہیں بھی بولے، عبادت کے کام اگر غیر اللہ کے لیے انجام دیے جائیں تو یہ شرک ہے. بس اللہ کے لفظ کے آگے اگر غیر لگا لیں گے نا تو ساری بات سمجھ آ جائے گی کہ اللہ کے سوا کے لیے کی جائے. कुल इन सलाती व नुसुकी व महया व ममाति लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप देखिए कि कोई अल्लाह के अलावा गैर के आगे जाके सजदा करे तो मुशरिक होगा ना, होगा ना। रुकू करेगा तो मुशरिक होगा ना, जो ज़ाहरी रिचुअल्स हैं। तो फिर अगर अल्लाह के माँ सिवा की बात मानेगा एतात के मानों में, तो क्या फिर ये मुशरिक नहीं होगा? और अल्लाह ने जिसे रोका उसे ना रुके किसी को खुश करने के लिए, तो क्या फिर वो ऐसे होगा अल्लाह के पास? तो सवाल पैदा होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर इबादत की हकीकत क्या है? यानी ये बहुत बड़ी बात है कि मैं और आप अपने आप को इस चीज़ के लिए समझें कि इबादत है कि तभी तो करेंगे। देखिए, एकदम मैं आती और आपको नमाज़ शुरू करा देती, आपकी नमाज की बहसों में, फिकी बहसों में अपने इतना उलझना है कि अच्छा औरत की नमाज, मर्द की नमाज, फ़लाँ नमाज, फ़िक़्हे हनफ़ी की नमाज़, फ़िक़्हे शाफ़ी की नमाज़, फ़िक़्हे मालिकी की नमाज़। आज तक कभी किसी ने उन सारी चीज़ों से पहले इन चीज़ों को समझा कि नमाज खुद के, अभी तो हम नमाज तक पहुँचे ही नहीं और आज पहुँच भी नहीं पाएंगे। पहली चीज़ ही आज हम नहीं कर पाएंगे, मुझे नहीं यकीन कि हम वहाँ पहुँचेंगे। क्यों नहीं पहुँचेंगे? कि अभी हमें नमाज की असल रूह ही नहीं पता। तो इबादत क्या है? इबादत रूह की ग़िज़ा है। ये चंद जुमले इबादत की मोहब्बत में बोल के आपको इसकी हकीकत के फिर तीन पॉइंट्स लिखाती हूँ। इबादत रूह की ग़िज़ा है, आज़ादी का रास्ता है, बंदों पर अल्लाह ताला का हक है, अलबूदियत की असल हुदू और तदल्लुल है, यानी अल्लाह के आगे टूट जाए बंदा, झुक जाए। और इबादत जिसका हुक्म दिया गया वो अल्लाह के हजूर आजजी, इनकिसारी और इंतहाई मोहब्बत है। पीछे बात हो गई है, अल्लाह ताला से मोहब्बत वाजिब है। सूरह तौबा 24 अगर आप लिखना चाहें लिख लें, आपके पास इधर रेफरेंस नहीं लिखा, आप खुद लिख लें कि अल्लाह से मोहब्बत वाजिब है। अल्लाह ने 9 चीज़ों की लिस्ट गिनवा दी और कहा कि अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादन फी सबीलिहि फतरब्बसु हत्ता यातियल्लाहु बिअम्रिहि, कि अगर तुम्हें माल, औलाद, बेटे, घर, घरों की मोहब्बत, ये सब कुछ अल्लाह से ज़्यादा प्यारी है अल्लाह के रसूल से, उसके रस्ते के कामों से, तो तैयार हो जाओ फिर उस फैसले के लिए जो अल्लाह सादर करेगा। ठीक है, फिर याद रखिए कि मोहब्बत का आगाज़ लगाव से होता है। पहले आपको किसी से अटैचमेंट होती है, फिर दिल का ताल्लुक पैदा होता है, फिर शौक़ के साथ साथ आपका दिल झुकता जाता है, और फिर एक वक्त आता है कि वो मोहब्बत आपके रगो रेशे में घूम जाती है, और मोहब्बत का आखिरी दर्जा जो है वो आप वलूख, अगर आप लफ्ज़ लिखें ना इलाह अलीहा, वही समझ लीजिए कि मोहब्बत का आखिरी दर्जा जो होता है ना वो क्या है कि आप अपने बस में नहीं रहते, वालहियत है। मोहब्बत के सारे स्टेप से गुज़रते गुज़रते बंदा अल्लाह के साथ वालेहाना मोहब्बत करने लगता है, ये इबादत है। तो सवाल पैदा होता है कि फिर इस्लाम में इबादत की हकीकत क्या है? तो तीन बातें इसमें आपके रेफरेंस लिखे हुए हैं। पहली बात क्या है? इबादत ही इंसान की ज़िंदगी का मकसद है, यानी मकसद हयात लिख लीजिए। इंसान इस दुनिया में आया नहीं, लाया गया, वो खुद पैदा नहीं हुआ, इसे पैदा किया गया। सूरह तूर आयत 35-36 इसकी दलील है, यानी मुराद है कि इंसान खालिक नहीं मखलूक है। और तारीख इंसानी में ये दावा आज तक किसी ने नहीं किया कि मैं खालिक के बग़ैर पैदा हुआ हूँ या मैं किसी को पैदा कर सकता हूँ। अल्लाह ही खालिक व मालिक है, वही है। याद कीजिए नमरूद के साथ जो हज़रत इब्राहिम का मुकालमा था तीसरे पारे में, तो किस बात पे फबूही तल्लाजी कफर का लफ्ज़ आया कि जब हज़रत इब्राहिम ने उसको कहा था कि मेरा रब तो सूरज को मशरिक से लाता है, तू मगरिब से ले आ, वो जिंदा को मुर्दा कर देता है, मुर्दा को जिंदा। तो याद रखिए कि ये एक इंसान की असल सोच होनी चाहिए कि अल्लाह ने मुझे पैदा ही इबादत के लिए किया है। दूसरी बात देखिए, हर चीज़ अपनी असल की तरफ लौटती है ना, तो हर इंसान की को भी अपने असल की तरफ लौटना है और लौट जाना हक है। क्या पता चला? दूसरी चीज़ देखिए, क्या समझ है इबादत की हकीकत? कि हम नमाज में या इबादत में ये दिखा रहे होते हैं कि अल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, लौट जाने का तसव्वुर लिख लीजिए। और इसके रेफरेंस भी आपके पास लिखे हुए हैं, सूरत मोमिनून 116, क़ियामा 36, दुहान 40-38 भी है, सूरत स्वाद 27-28 भी है। تیسری چیز ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورہ زاریات 56. کیا اس میں پتہ چلا کہ انسان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا؟ اصل میں جو اللہ اور بندوں کے بیچ بندگی کا معاہدہ ہے نا، وہ عبادت ہے. سورۃ اعراف 172-173 میں وہ وعدہ اللہ سے ہے جس کا ذکر آگے بھی آئے گا. تو کیا پتہ چلا پھر؟ ساری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے اس لیے پیدا کیا کہ ہم اس سے پیار کریں، اس سے ڈریں، اس سے امید رکھیں، اور اس سے ہی نہیں اس سے ہی رکھیں. دوسروں کو چھوڑ کر صرف ایک رب کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لیجئے. اور ایسا بندہ جب اللہ کے لیے اپنی زندگی کو کھپا دینے کا کام کرتا ہے تو یہی خدا روحی زندگی ہے. یہ ہے پھر ان الصلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین، کہ تم راضی ہوتے ہو تو ہو، تم ناراض ہوتے ہو نہیں ہوتے، تو پھر میں کیا کروں؟ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. نماز کا وقت آ گیا ہے، حی علی السلام، مجھے جانا ہے. میں یہاں اس لیے نہیں آیا کہ بیٹھ کے تمہیں چائے پانی پلاتا رہوں. تم میرے مہمان ہو، تمہارے حق ہیں، پر جس نے تمہارے حق مجھے دیے ہیں اس کا اپنا حق آ گیا. مجھے ایک بادشاہ نے بلا لیا. ایک ویڈیو دیکھی تھی کہ کوئی نان مسلم ملک کا ایک گروپ تھا، تو وہ سعودی عرب کے ویزے پہ، سعودی عرب کی وزٹ پہ تھا. تو جو اس وقت کے فرما روا تھے وہ ان سے بات چیت کر رہے ہیں. وہ سب لوگ ابھی قافلے والے کھڑے ہیں اور مل رہے ہیں جیسے بھی ہیں. اتنے میں اذان کی آواز آتی ہے، تو جو سعودی حکمران ہے تو انہوں نے ایک دم ہاتھ ہلایا تو وہاں سے ہٹ گئے. وہ گئے تو جو سعودی نمائندے تھے سارے وہ بھی ایک سے ایک چلے گئے. آخر میں صرف وہ لوگ جو وہاں آئے تھے وہ کھڑے تھے. تو وہ ان کو دیکھ رہے تھے، تو ان کو بتایا گیا کہ نماز کا وقت آ گیا ہے، تو اب اصل بادشاہ نے بلا لیا ہے اس وقت آپ کو. ان کا اوکے نو پرابلم. کتنی دیر وہ لوگ وہاں بیٹھے رہے، انتظار کرتے رہے جب تک کہ وہ مسلمز نماز پڑھ کے واپس نہ آئے. یہ ہے اصل میں عبادت. اور جس کو اس کی عادت پڑ جائے پھر مجھے بتائیے اس کے بعد اس کو ضرورت پڑے گی کسی اور کو کچھ کہنے کی؟ یہ اتنے درس لیکچرز کی ضرورت نہیں پڑتی مسلمانوں کو. اگر عبادت کا صحیح کانسیپٹ سمجھ آ جائے، اور حقیقت ہے کہ ہماری زندگی جو ہے اس کو دیکھیں، اور آج جتنے بیکار قسم کے لطیفے ہیں، کہتے ہیں وہ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں جن کا اس کرنے کو کچھ ہے نہیں، وہی مسجدوں میں جاتے ہیں جو جاب لیس ہیں. یہ بات اصل سمجھ آ گئی کہ اللہ نے آپ کو مجھے کھانے پینے کے لیے پیدا کیا. کیا ہمارے مرد صرف کمانے کے لیے آئے ہیں کہ وہ کماتے رہیں اور نمازیں اور جمعے بھی چھوڑتے رہیں اور ہم پکاتے رہیں اور بچوں کو پالتے رہیں؟ یہ ہے آج نسلوں کے بگاڑ کی وجہ. آج ہمارے بچے ہماری بات کیوں نہیں سنتے؟ کیونکہ ہمارے پاس عبادت کے لیے وقت نہیں. آج کانسیپٹ ہو گیا ہے کہ میری زندگی میں اتنی فرصت کہاں جناب، عبادت تو فارغ لوگوں کا کام ہے. اور وہ اماں جی ہیں نا، وہ تہجد میں اٹھ جاتی ہیں، اور وہ ابا جی ہیں وہ پانچ وقت میں مسجدوں میں جاتے ہیں. کیا آپ میں انسان جانور ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو پھل سبزی یہ کچھ کھا کر اس لیے پیدا کیا کہ کھا کر مٹی میں چلا جائے؟ یہ شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے. پھر آپ بتائیے کہ اللہ نے انسان کو عقل کیوں دی، ارادہ کیوں دیا، صلاحیتیں کیوں دی؟ یہ آپ کو مجھے اس لیے دیں کہ اللہ کو پہچانیں، پیار کا جذبہ اس لیے ڈالا کہ اللہ سے محبت کریں. تو لہٰذا حزد خضوع و خشوع. آپ نے اس پورے ویک میں، ابھی انشاءاللہ آپ کو ایک چیک لسٹ ورک شیٹ بھی دوسری بھی دیتے ہیں، تو آپ لوگوں کو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ ہم نے اپنی عبادات کو ٹریک کرنا ہے. کیونکہ اصل میں ہم بگڑے ہوئے لوگ ہیں، معذرت کے ساتھ بہت ہی لڑ لے ہیں، ٹو مچ لڑ لے ہیں. ہم وہ دو رکھتے ہیں پڑھ کے آ جائیں جس میں ایک بار رب نہ یاد آئے، ہم کہتے ہیں شکر ہے نماز پڑھ لی ہے. چلو یہ بھی شکر ہے، یہ تو وہی کرے گا نا کہ جس کو عبادت نماز کی عادت پڑی ہوئی ہے. اور حافظ ابن قیم کہتے ہیں کہ عبادت کی اصل اللہ کی محبت ہے، اور اس کی محبت، اور یہ کہ محبت تمام کی تمام اس کے لیے ہے، کوئی دوسرا شریک بھی نہ ہو اور اسی کی وجہ سے محبت کی جائے. تو لا الہ الا اللہ کا ایک اصول کیا ہے؟ اللہ کی محبت میں ہم کسی کو شریک نہ کریں، اسی کو خدو کہتے ہیں. نیکسٹ کوسچن دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یعنی جو خدو ہوتا ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ دل چاہتا ہے کہ میرے اندر خضوع خشوع ہے. خضوع اردو میں بولوں گی نا تو خضوع بن جائے گا، ہم بولتے ہیں خضوع خشوع. خشا کیا ہوتا ہے؟ دل کا جھکنا. اور خدا کیا ہوتا ہے؟ جوارح کا، کہ پتھر کے بت بنے کھڑے ہیں نماز میں، ایسے لگتا ہے کہ تیر بھی لگ جائے تو اپنی جگہ سے نہیں ہلتے. صحابہ کی نمازیں ایسی تھی نا. تو خضوع کی کیا بنیاد ہیں؟ دو بنیادیں نوٹ کر لیجئے. پہلی بنیاد کیا ہے؟ کہ اللہ کی توحید کا علم اور شعور، اور اس کے اسماء صفات کا علم اور ادراک ہو. یعنی وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو توحید ہے وہ رچو رگ و ریشے میں رچی بسی ہو. اور دوسری بنیاد ہے اپنی کمزوری اور بے بسی اور محتاجی کا شعور. یہی شعور انسان کو پھر اللہ تعالیٰ کے آگے ڈال دیتا ہے. کیا پتہ چلا آپ میں سے کوئی بتائے تو بونس ہے اس کے لیے کہ اس سوپ کے اوپر قرآن کی کون سی آیت فٹ ہوتی ہے. ایک جملہ میں نے کوئی بیسیوں بار تو بولا ہی ہوگا اپنی زندگی میں, مجھے وہ یاد آ رہا ہے اصل میں اس وقت, اس لیے پوچھ رہی ہوں. گڈ, اچھی بات ہے یہ بھی کہ ربی انی لما انزلت الی من فقیر میں بھی یہی کانسیپٹ سمجھ آتا ہے. اس میں یہ سمجھ آ رہی ہے دوسری بنیاد کہ میں ایک فقیر ہوں. ایک اور سورۃ فاتحہ میں ہم کیا کہتے ہیں, اس کے آگے کیا کہتے ہیں, وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. جی شاباش, یہ تھا اس کا جواب. اور اس کو اردو میں بولوں, اللہ اکبر پہلی بنیاد ہے اور انی اصغر دوسری بنیاد ہے. یہ جو میں نے پہلی اور دوسری بنیاد لکھائی ہے نا, اس کے آگے لکھ لیں, پہلی کے آگے صرف یاد رکھنے کے لیے اپنے لیے. پہلی بنیاد ہے اللہ کو اکبر مانے اور دوسری کیا ہے, خود کو اصغر مانے. نیکسٹ کوسچن, اگلے پیج کا پہلا سوال ہے, اللہ کی محبت کی پھر بنیاد کیا ہے, یعنی کیا بنیاد ہوگی, کس بنیاد پہ اللہ کی محبت کی عمارت کھڑی ہوتی ہے. تو یہ معرفت ہے, پہچان ہے. جو شخص اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے اس سے اسے محبت ہو جاتی ہے. اور ایک بڑا بڑا کر کے اسی خانے میں جملہ لکھ لیں, محبت انسان کو اسی درجے کی ہوتی ہے جس درجے کی پہچان ہوتی ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے اتنی ہی محبت ہوگی جتنی اس کی پہچان ہوگی. از اٹ کلیئر؟ دنیا میں آپ کسی چیز کو پہچانے بغیر, اس کے فوائد کو جانے بغیر اس سے محبت کر سکتے ہیں؟ بس یہی ہے ادھر بھی. نیکسٹ کوسچن, اللہ تعالیٰ سے محبت پھر ہوتی کیسے ہے, کیسے اللہ سے پیار کریں, اس کی کیا بنیاد ہے, اللہ سے محبت کیسے, کب, کہاں. تو یاد رکھیے, اللہ تعالیٰ سے محبت کب آتی ہے, کیسے ہوتی ہے. نمبر ایک, آپ اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو نقصان سے بچانا چاہتے ہیں. چھوٹے سے بچے کو بھی اگر آپ ہوا میں اچھا لیں گے نا تو ایک دم آنکھیں بند کر لیتا ہے. مرنے کا خوف لے کر انسان دنیا میں آتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے جب محبت کرنا چاہتے ہیں نا تو پہلے خود سے محبت کریں. وہ کہتے ہیں نا کہ من عرف نفسہ عرف ربہ, یہ ایک ضعیف قول ہے لیکن کہہ لیجئے کہ روحانیت کی زبان میں اس کو بہت بولتے ہیں, لیکن میں اس کو بولتی ہوں انسان اے ٹو زی سے. کل ہم نے پرسوں فلائر دکھایا تھا نا اس سال کا, دور قرآن ایک سال ہم نے لندن سے کیا تھا. پورے دور قرآن کے دوران ہم نے پورے انسان کو اندر سے کھول کے دیکھا, آنکھ کیسے کام کرتی تو باقی چیزیں کیسی, اور اس سب کو پہچان کر ہمیں کس سے محبت ہوئی. ایک تو اپنے سے ہوئی کہ ہم اتنے کمپیکٹ ہیں, اتنے مکمل طریقے سے اللہ نے بنا دیا, اور دوسری اللہ سے محبت. تو یہ مراد ہے, یہ ہے بنیاد انسان کی محبت کی, کہ جب وہ اپنے وجود پہ نظر ڈالتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ سے محبت محسوس ہوتی ہے. اور یاد رکھیے, پہچان پھیکی تو محبت بھی پھیکی بد رنگ. اور حسن بصری کہتے ہیں, جس نے اپنے رب کو پہچان لیا اس نے اسے محبت کی, اور جس نے دنیا کی حقیقت کو جان لیا وہ اس سے کنارہ کش ہو جائے گا. سمجھیے گا, میں صرف مثال دینا چاہ رہی ہوں. میرا کوئی مراد اس وقت کسی کو کوک کے خلاف کرنا نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ کوک سب کو اچھی لگتی ہے عام طور پہ, بچے بھی کالا پانی اٹھا لیتے ہیں. لیکن اگر اس کے انگریڈینٹس, اس کے نقصان, اس کا کاربن, اس کا شوگر لیول دیکھے تو وہ لوگ نہیں پیتے نا, نہیں پیتے نا. یہ مراد ہے, دنیا بظاہر میں خوبصورت, پمپی, گلیمری, جتنا دنیا کو دیکھتے جائیں کہتے ہیں چھوڑو بیکار, بوجھ ہے, کون اٹھائے, کون رکھے, کون سنبھالے. اور اللہ کی ہستی ایسے جیسے دودھ, بظاہر اچھا نہیں لگے گا, وائٹ ہے, پھیکا ہے, لیکن جب آپ دودھ کا کمبینیشن دیکھیں, دودھ میں کیا فائدے ہیں, ہڈیاں جڑتی ہیں, بچہ دو سال تک کچھ نہ بھی کھائے صرف دودھ پی لے تو بھی بچتا ہے, دیٹ مین دودھ از امپورٹنٹ تھنگ. تو پھر آپ کو دودھ سے محبت ہوتی ہے. تو دو کام کرنے آج کے بعد, میں نے اللہ کو زیادہ سے زیادہ جانیں, معرفت لیں, اور دنیا کو بھی زیادہ سے زیادہ جانیں تاکہ اس سے جان چھوٹے ہماری. بڑی مشکل سے چھوٹتی ہے, لیکن اس کو چھڑوانے کے لیے بھی مجاہدے کرنے پڑتے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سے محبت تو ہوئی تو نبی سے بھی محبت ضروری ہے؟ بالکل ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے ہوتی ہے؟ اللہ سے محبت کیجئے, نبی سے بھی ہوگی. جو چاہتا ہے کہ اللہ اسے محبت کرے وہ بھی نبی سے پیار کرے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے کتنی محبت تھی, تو یاد رکھیں اللہ کے نبی کو آپ سب ساری دنیا کے انسانوں سے زیادہ اللہ سے محبت تھی. کیوں؟ آپ نے کہا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. نماز تو دل سے رابطہ ہے اللہ سے, محبت اللہ سے باتوں کا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق دکھتا ہے. علامہ انی اسلک لذت النظر الی وجھک والشوق الی لقائک. کیا یہ دعا زبان پہ آ سکتی ہے اگر اللہ سے محبت نہ ہو؟ پھر اگلا سوال کیا کہ تمام رسولوں نے کس کی عبادت کی؟ یہاں دیکھیے کہ آپ اور میں عبادت کر کے اور عبادت کی اصل کو سمجھ کر رسولوں کی اس کڑی کے ساتھ جڑتے ہیں کہ جو دنیا میں بہترین انسان تھے. تو یاد رکھیے تمام رسولوں نے اللہ کی عبادت کی, اللہ سے محبت کی. سورۃ الانبیاء 25, وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ کیا انہ لا الہ الا انا, کرو کیا فعبدونی. اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم اس کی طرح وحی کرتے رہے کہ یقیناً میرے سوا کوئی معبود نہیں, پھر تم میری ہی عبادت کرو. سوال پیدا ہوتا ہے تمام رسولوں کی پہلی دعوت کیا تھی. یہ بڑا اہم نقطہ ہے کیونکہ دنیا کے چنے ہوئے ان لوگوں نے اگر جو کام کہا تو وہ ٹھیک ہی ہوگا نا. تو تمام رسولوں کی یہ پہلی دعوت تھی کیا؟ ان اعبدوا اللہ, اللہ کی عبادت کرو. چند ریفرنسز آپ کے سامنے لکھے ہیں, چھ رسولوں کے بس نام لکھنے ہیں اپنے. حضرت نوح نے یہ دعوت دی عبادت کی, سورت مومنون 23. حضرت ہود کی یہ دعوت کہاں ہے؟ سورت ہود آیت 50. حضرت صالح سورت ہود آیت 61. شعیب الاعراف 85. ابراہیم کی اس دعوت کا تذکرہ ہے سورت انعام 80 میں. اور سارے انبیاء کی پہلی دعوت اللہ کی عبادت کی تھی, یہ ہے سورت الانبیاء 25 اور زہر 45 میں. نیکسٹ کوسچن, کیا اللہ نے ہم انسانوں سے اپنی عبادت کا عہد لیا؟ ابھی تو ایک ہی بول کے آئے, الستو بربکم, شاباش. تو پہلا اس کا موقع کیا ہے؟ یعنی پہلے ایک تو سورہ یاسین آئے 60-61 آپ کے پاس ریفرنس لکھا ہوا ہے, آپ اس کو جا کے پڑھ لیجیے. الم عہد الیکم یا بنی آدم, کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا بنی آدم؟ تو وہاں تو اللہ نے سوال کیا سورہ یاسین میں. کتنے لوگ ہیں جو 300 دفعہ بھی سورہ یاسین پڑھ کر آئے 60-61 پہ رک جائیں کہ اللہ آپ سے وعدہ کوئی لے رہا ہے, کوئی وعدہ پوچھ رہا ہے؟ تو پتہ چلا کہ اللہ نے وعدہ لیا ہے, سورۃ یاسین 60-61 اور دوسرا ریفرنس سورۃ الاعراف 172-173. نیکسٹ کوسچن کیا ہے کہ ہم عبادت کیوں کریں, کیا ضرورت ہے عبادت کرنے کی؟ کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ خام خواہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالیں. تو اس وقت اس میں آپ کی شیٹ میں 8 پوائنٹس کے ریفرنسز دیے گئے ہیں, اس کو ذرا سا سمجھ لیجئے. امام رازی ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں, کہتے ہیں کہ جان رکھو کہ جس کو عبادت کے فوائد معلوم ہو گئے تو اسے اس میں مشغول ہونے کی لذت حاصل ہوگی, اور اس کے علاوہ والا وقت اس کے لیے بوجھ بنتا ہے. پھر بول دوں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جس کو عبادت کے فائدے پتہ لگ جائیں گے نا, وہ ہر وقت عبادت کی لذت لینا چاہے گا, اور جس وقت ذرا سا وہ اس سے کسی وجہ سے دور ہو جائے گا تو بوجھ ہوگا. اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا ان لوگوں کو جن کو مسجد کی جماعت کی نماز کی عادت ہے اور جن کو نفلی روزے رکھنے کی عادت ہے, ساری دنیا ان کو کہ گھر پڑھ لے, وہ کہتے نہیں مجھے تو مسجد پڑھنا ہے. اور لوگ کہیں گے اتنی گرمی اتنی یہ وہ مت رکھیے روزہ, وہ کہیں گے آپ کو کیا مجھے تو رکھنا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کو لذت ملتی ہے. اسی طرح ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دلوں کو اپنے خالق, فاطر, الہ, معبود, ولی, مولا, رب, مدبر, رازق, مارنے والے اور زندہ کرنے والے سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں. نام ہے نا بیچ میں اللہ کے, مطلب یہ ہے کہ دل کو سب سے جو پیاری چیز ہے وہ اللہ کا نام ہے, اللہ. اس کی محبت جانوں کے لیے برکت, روحوں کے لیے حیات اور سینوں کا سرور, دلوں کی غذا, عقل کا نور اور آنکھوں کی ٹھنڈک اور باطن کی تعمیر ہے. کوئی سمیٹ سکتے ہیں ان لفظوں کو؟ اور جب تک چکھی نہ ہو, جب تک آپ کا اپنا پرسنل ایکسپیرینس نہ ہو, یہ لفظ مجھ سے نہیں نکلتے. یاد رکھیے, آپ کہیں کہ ٹھہرے ذرا رکیے رکیے, ہم آدھے لکھے آدھے بولے. آپ ذرا نوٹ تو کریے کہ امام ابن قیم کو یہ لفظ کس نے ڈکٹیٹ کرائے تھے. उनके दिल ने डिक्टेट कराए थे। एक लफ्ज़ मैं बोल दूं, बाकी आपका दिल बोले और वो लिखिए। जिसने चखी नहीं, जिसने पी नहीं, जिसने खाई नहीं, जिसने नहीं की थी, याद रखिए कि वो बंदा कैसे इसको लेके जा सकता है। तो ज़रूरत है इस बात की कि आप और मैं इस चीज़ पे गौर व फिक्र करें और अपनी हालत ठीक करें। इस पूरे वीक में आपने अपनी इबादत को ज़िंदा करना है, अपने आप को देखना है, और फिर सिर्फ एक वीक में नहीं, ये फिर ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगा। तो आइए नोट करते हैं कि हम अल्लाह की इबादत क्यों करें। पहली वजह, ये हमारी रूह की ग़िज़ा है, और जिसको ग़िज़ा, जिसको इबादत के सिवा किसी और चीज़ में सुकून मिलता ही नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो हमारे लिए बस ऐसी होती हैं जैसे हमने नाम सुने होते हैं। दूसरी बात, इसलिए कि इबादत आंखों की ठंडक है, दिल का सुरूर है। इसकी दलील में आपके सामने हदीस लिखी हुई है मुस्नद अहमद की। देखिए, जो जिन लोगों के पास शीट्स नहीं है वो सारा नहीं लिख सकेंगे, वो घबराएं नहीं, बस वो सिर्फ सुने। लिखने के लिए शीट लाजमी है, और शीट के लिए आपको वीज़ा क्यू में जाना पड़ेगा, उधर आपके साथ शेयर की जाती हैं शीट्स को। कुछ लोग बाहर से सोच रहे हैं कि हम सारा लिख नहीं पा रहे, तो ऑफकोर्स सुनने में तो ये बातें लिखी नहीं जाती, लेकिन जो नोट होता है वो तो कर सकते हैं आप अल्लाह के हुक्म से। तो क्या पता चला कि इबादत आंखों की ठंडक है। एक सवाल करूँ आपसे, आंखों की ठंडक क्या होती है? सुकून मिलता है। कब आखिरी नमाज में हमें ये कैफियत नसीब हुई थी? आंखें ठंडी होगी, आप बच्चे को देखते हैं 2 साल के बाद, बेटी माँ मिलती है 10 साल के बाद, उस वक्त आंखों में आंसू होते, वो आंखों की ठंडक है ना। क्या नमाज में आंखें भीगती? हमारी नमाजें जिंदा होने की ज़रूरत है, ज़रूरत है इस बात की। फिर तीसरी चीज़ नोट कीजिएगा, और वो क्या है कि इबादत क्यों करें? कि इबादत इसलिए करते हैं कि अल्लाह से मदद तलब करना आए। सूरत ज़ुमर 29। जब इंसान अल्लाह की इबादत करता है तो इसकी मोहब्बत, नफ़रत रोक लेना सब अल्लाह के लिए होता है। तो आप कह लीजिए कि इबादत एक बंदे को दूसरों से आज़ाद करती है। आप ये भी इसका कोडवर्ड लिख सकते हैं, इबादत क्यों करें? ताकि दूसरों से बेनियाज हो जाऊँ। यही बात अबू दाऊद 4681 में भी है। चौथी चीज़, हम इसलिए इबादत करते हैं कि ये एक अमानत है जिसको अदा करते हैं। सूरत अहज़ाब 72, याद है किसी को उसका खुलासा? इन्ना अरदनल अमानता, अल्लाह कहते हैं हमने इस अमानत को पहाड़ों, हमने इस अमानत को पहाड़ों पे पेश किया और उन्होंने नहीं उठाया, और बिल आखिर इसको किसने उठा लिया? इंसान ने। तो इबादत अमानत है, कितनी अमानतें हमारे ज़िम्मे। एक एक नमाज को गिन के वक्त के साथ पढ़ना पढ़ाना क्यों लाजमी है? अमानत है। रोज़े नहीं रखे जो छूट जाते हैं कुछ हर साल, पूरे करने, अमानत है। किसी को आपने 100 रुपये, $100 देना हो तो देते हैं गिन गिन के? कहते हैं कोई नहीं 80 रख लो, चलो कोई बात नहीं, चले 100 दिया था 102 ले लो, नहीं करते ना। तो ये इबादत हमारे ऊपर अमानत है। फिर पांचवी वजह यह है कि हम अल्लाह की इबादत इसलिए करते हैं कि जहन्नम के अजाब से अपनी पनाह में हमको रखे। सूरह आल इमरान 190 से 192, आखिरी रुकू जो रात को पढ़ा जाता है। फिर, और इसी की बात अब इबादुर रहमान की खसूसियत है कि वो अल्लाह की आग से पनाह मांगते हैं, फुरकान 65-66। छठी वजह इबादत की, हम जन्नत मांग सकें। देखिए, आज कुछ टूटी फूटी कोशिश की होगी, कुछ करेंसी जमा की होगी, तो कल जाके ख़रीदेंगे ना। तो जो आज पढ़ी कोई नहीं, फिर क्या, हमारी नमाजें बिलाखर इसी पलड़े में आनी है कि अल्लाह खुशू खुजू नहीं था, सुकून नहीं था, नमाजों की रूह जिंदा नहीं थी, लेकिन पढ़ी तो थी ना, तो अब हमें जन्नत दे दे। तो छठी वजह इसलिए कि हम जन्नत का सवाल कर सके, क्योंकि कुरान और हदीस में जो भी लोग अल्लाह के दोस्त हैं उनकी एक वसफ क्या है कि वो नमाजी होते हैं और वो जन्नत और उसके बुलंद दर्जों का सवाल करते हैं। सही मुस्लिम 1094। और फिर इसी तरह से सातवीं वजह अल्लाह ताला की इबादत करने की क्या है? अल्लाह ने हमें इतनी खूबसूरत दुनिया दी, इतना कुछ बना के दिया, लेकिन इसके बदले में हमसे कुछ मांगा तो नहीं ना। देखिए, आपको कभी बिजली का बिल आता है ना, हमेशा ही आता है। पानी का आया, कौन सा आता है जो पाइपों से गुजर के आता है, नदी नालों में से आता है? हवा का बिल आता है, इतनी बड़ी छत है आसमान की, उसका बिल आता है। तो आप कह लीजिए कि हम इबादत इसलिए करते हैं कि अल्लाह ने हमें बहुत सारी चीज़ें फ्री दे दी, زمین، سورج، چاند، ستارے، بستر، پانی، ہر چیز بنا کر دی، سمندروں میں کشتیاں چلائی، تو ہم اس کی کچھ پے بیک کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں. بخاری 73:73 اس کی دلیل ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کو اس کی نعمتوں کے شکرانے میں کچھ پیش کرنا چاہتے ہیں. اور آٹھویں اور آخری بات اس میں کیا ہے، یاد رکھیے گا، اس کے بعد تو پھر واقعی سارا غرور تکبر ختم ہو جاتا ہے کہ اللہ کو میری نہیں، کسی مخلوق کی بھی عبادت کی قطن ضرورت نہیں ہے. وہ انسانوں کی عبادت کا محتاج نہیں، کمی نہیں، فرشتے موجود ہیں. سورۃ فصلہ 36 اور سورۃ انبیاء آیت 19:20 فرشتوں کا ذکر ہے. آپ کو کیا پتہ اللہ کے کتنے عبادت گزار لوگ ہیں، کتنے ہیں، کون ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ اللہ نے اگر ہمیں عبادت کرنے کا حکم دیا ہے نا، تو یہ ہمارا اللہ کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، یہ ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے در کا بنایا. آپ دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں نا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، دلاتا ہے ہزار سجدوں سے آدمی کو نجات. آج جس بندے نے، جس سوچ نے اللہ کو پوجنا چھوڑا، اس مذہب میں 4 کروڑ خدا ہیں، 4 کروڑ بتوں کی پوجا کرتے ہیں ہندو دھرم. میں نے ایک ہندو سسٹر سے یہ بات ریکنفرم بھی کی تھی، میں نے سنی بھی تھی، پڑھی بھی تھی کہیں نہ کہیں، پر مجھے، میرا دل نہیں مانتا تھا 4 کروڑ کہاں ہیں. تو کہتی ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ پیچھے سے. وہ اپنے خاص نام لیتے ہیں کچھ، جیسے کتب، ابدال اور ہمارے نام ہیں نا، تو وہ کہتی ہیں کہ ہاں ہمارے دھرم میں فلاں فلاں کر کے جمع کر کے بڑے پرکھوں کا وقت کچھ اس طرح کی باتیں کر رہی تھی. تو اتنے کروڑوں کی پھر وہ عبادت کرتے ہیں، مل جاتا ہے سب کچھ. آپ یاد کیے رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تھے، عبادت کے نام پر کیا تھا، اتنا تشدد تھا کہ وہ بوجھ اور مجبوری بن گئی تھی، اور کہیں اتنی رخصتیں تھیں کہ کھیل اور تماشا بن گیا. آگے ہم پڑھیں گے اس کو انشاءاللہ، کیسے کہیں رحبانیت کے نام پہ تھے اور کہیں مجاہدوں اور مراقبوں اور مناقشوں کے نام پر تھے، لیکن عبادات روح سے خالی تھی، محض رسمی عبادات تھی اور کچھ بھی نہیں تھا. اسلام آیا تو اس نے کیا کہہ دیا، وہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو کتنا خوبصورت رکھا. دیکھیے آپ جب پڑھتے ہیں یہ بات کہ دین سیدھا ایک ہے. اب آپ دیکھیے، میں آپ سے انسانی طبیعت کے اعتبار سے پوچھنا چاہتی ہوں، ایک کو راضی کرنا زیادہ آسان ہے یا زیادہ کو؟ ایک کو، یعنی ایک فیلڈ میں ایک بندہ، یہ کہہ لیجئے، جو وہ سمجھے جو اس وقت کی بہتر ہم کر دیں. اور اگر ایک ہی فیلڈ میں دو لوگوں، اسلام میں دو امیر کیوں نہیں ہے، دو لیڈر کیوں نہیں ہے، دو خلیفہ کیوں نہیں؟ چلے ابو بکر کو جب خلیفہ بنایا تھا، ایک سوال ہے میرا آپ سے، عشرہ مبشرہ میں آپ دیکھ ہی رہے ہیں نا یہ سارا کچھ. تو آپ دیکھیے کہ جب عشرہ مبشرہ کو ابو بکر کو خلیفہ جو بنا دیا، تو اللہ کے نبی ساتھ ہی عمر کو بھی کہہ جاتے ہیں ایک وقت میں دو ہو جاؤ. سورہ سوچئے تو صحیح، ابو بکر اور عمر دونوں کی خوبیاں مل جاتی، عقل تو کہتی واہ 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 کیا ہوتا اسلام کے پودے پہ بہار، لیکن ایک وقت میں ایک ہی ہے. حالانکہ ابو بکر جسمانی کمزور تھے، کئی چیزوں میں نرم تھے، اور عمر بہت سخت ہے، لیکن خلیفہ ایک ہی بنا. اور قل ہو اللہ احد میں بھی یہی بات ہے، عبادت آپ کو مجھے فوکسڈ ہونا سکھاتی ہے، ایک امیر کی اطاعت میں رہنا سکھاتی ہے. سورۃ حج یا اس کی اگلی سورت ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر دو خدا ہوتے نا تو زمین و آسمان کا نظام بدل جاتا، بگڑ جاتا. تو ضرورت اس بات کی کہ ایک بندہ اپنے لیے اس کو نعمت سمجھے. اب نیکسٹ کویسچن بہت اہم ہے، اسلام نے کن اصولوں پر عبادت کی بنیاد رکھی، اصل کیا تھی؟ تو یہاں نوٹ کیجئے گا، 6 اصول آپ کے سامنے پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں، یہ بہت ضروری ہے. اصول وہی ہے نا جس کو آپ بیسکس کہیں گے، رولز، وہ بنیادی اصول جس پر عبادت کی بنیاد ہے. نمبر ایک، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں. نمبر دو، اللہ اور بندے کے بیچ میں واسطوں سے آزادی، یعنی واسطے کی ضرورت نہیں ہے. تیسری بات، اخلاص، قبولیت کی بنیاد دلوں کا اخلاص. اور چوتھی، اللہ کی عبادت اس طریقے اور کیفیت سے جو اس نے خود مقرر کی. مثلا نماز میں اگر ایک رکوع اور دو سجدے ہیں تو یہ عبادت ہے، دو رکوع اور دو سجدے کر دیں گے تو عبادت قبول نہیں ہوگی. پانچویں چیز ہے اعتدال، اور چھٹی چیز ہے آسانی. اب ان 6 چیزوں کو اگر میں آپ کے سامنے کھول کے رکھوں نا، تو ہر چیز اپنی جگہ پہ ایک مکمل ٹاپک ہے. مثلا چند باتیں آپ، یہ جو آپ کے پاس جگہ ہے اسی میں نوٹ کرتے جائیں گے تو شاید فائدہ دے گا. پہلا اصول کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے. बात हुई कि पहले बहुत सारे लोग, कोई सूरज की पूजा करता था, कोई चांद सितारों की, किसी ने आग की पूजा की, किसी ने पानी की, जैसे बनी इसराइल ने गाय की पूजा की थी, आप लोगों ने देखा ही है, कई लोग आज भी करते हैं, कोई जिंदा की पूजा, कोई दरख्तों की, कोई हजर की, कोई नशर की, सब की करते हैं। और हज़रत नूह के दौर के बुतों के नाम तो कुरान में भी लिखे हुए हैं। इंडिया, जिसको आप हिंदुस्तान कह लें, 6वीं सदी इसी में यहाँ खुदाओं की तादाद 330 मिलियन, यानी 3 अरब 30 लाख तक थे। ये रिवायती किताबों में मौजूद है। कहते हैं कि अहले अरब में हर घर में बुत रखे जाते थे, सफ़र पर जाते तो उनसे बरकत हासिल करते थे। सहाबा में से जो लोग अपने इस्लाम से पहले के वाक़ सुनाते थे, कहते थे हर दौरे जाहिलियत में पत्थरों की पूजा होती थी, नया कोई अच्छा पत्थर मिलता ना, उसको पकड़ते पहला फेंक देते, दूसरे को लेते, और कहीं पत्थर ना होता तो जो चीज़ पास होती देते, फिर उस पर बकरी का दूध डालते, फिर उसका तवाफ़ करते। एक शख्स था, सफ़र पे जा रहा था, तो हस्बे आदत बुत साथ लेकर जाते थे। थोड़ा आगे चला गया तो याद आया कि मैं तो अपना बुत लेकर नहीं आया। अब ये उनके लिए एक बड़ी बदशगुनी थी, अब क्या करे, वापस जाए बहुत वक्त लगेगा। कहा नहीं, मुझे बुत तो बनाना है। खजूरें साथ रखी हुई थी, जैसे घुली हुई खजूरें होती हैं ना, मलीदा सा, तो वो रखा हुआ था सफ़र के ज़्यादा राख के लिए। कहने लगा बुत के बगैर सफ़र कैसे होगा, अल्लाह अकबर। तो उसने अपनी खजूरों को मैश किया, उसको डमी शक्ल में एक अपने जो भी ख्याली तसव्वुर था बुत का, उसका बना दिया। चलो शुक्र, अब मेरे साथ मेरा खुदा है। थोड़ा आगे गए, भूख लगी, क्या करें, खजूरें नहीं हैं, वो खुदा का हाथ खा गया। यानी सफ़र के आखिर तक बंदा पूरे खुदा को खा गया, ये होता था जी। ये सही वाक्य है, ऐसे वाक़ बेवकूफ़ी के और भी बहुत जगह है। और ये बात तो आपने सही बुखारी में भी पढ़ने जाके, 4287 नंबर है कि फ़तेह मक्का के दिन जब अल्लाह के नबी हरम में दाखिल हुए थे तो 360 बुत थे। और इसी तरह की चीज़ें थी। यहूद ने देखिए अल्लाह के साथ नाकिस होने की बातें पेश की हुई थी, ईसाइयों ने बाप और बेटे का जो तसव्वुर पेश किया था। कह लीजिए कि ये सब कुछ कैसे कैसे हुआ, इस्लाम ने सारी चीज़ों को ख़त्म की, इस्लाह की। इस्लाम इस्लाह मुआशरा का नाम है। कैसे अल्लाह की इबादत की तरफ लोगों को बुलाया, शिर्क को ख़त्म किया, दरमियान के वास्तों को ख़त्म किया। ये जब अगली असल हमने पढ़ी कि वास्ते वसीले नहीं चाहिए, कैसे इस्लाम से पहले वास्ते वसीले थे, आज भी हैं। पॉप के बगैर आप बख्शे नहीं जाते, पंडित के बगैर आपकी मुर्दे की बख्शिश नहीं होती, और अगर इतना खाना पका कर 40 दिन तक जाके ना डालें तो रूह भटकती रहती है। ये सब कुछ मौजूद था और आज दोबारा कई दुनिया के हिस्सों में मौजूद हो गया। इस्लाम ने इबादत को वास्तों और जगहों और उसकी कैद से निकाल दिया। सारी ज़मीन मस्जिद है, जहाँ मर्जी इबादत करो। आप देखिएगा कि जितना ज़्यादा हम अपनी मुस्लिम हिस्ट्री को पढ़ेंगे ना, ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, किस तरीके से ये बातें मौजूद हैं कि लोगों को ये इबादत के नाम पर भी जब तक बीच में कोई दूसरा नहीं मिल जाता था, वो अल्लाह के आगे भी नहीं आते थे। बुत सामने ना रखे तो नमाज ही नहीं पढ़ते थे, वो बुत नहीं मिल रहा। अब बुत तो हम कहते हैं ना, वो तो पता नहीं उसको क्या कहते होंगे, वो नहीं मिल रहा इसलिए ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। अल्लाह ने इंसान को इन सारी जकड़बंदियों से आज़ाद किया कि तुम क्या समझते हो। फिर तीसरी शर्त हमने देखी, इखलास। इखलास के बगैर कैसे कबूल हो? आप किसी को ऊपरे दिल से कोई खाने की ऑफर दें, वो कबूल करता है? वमा उमिरु इल्ला लियाबुदुल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन, सूरह बैजीन आयत 5। जब तक आप पूरे दिल से अल्लाह के लिए कोई काम नहीं करेंगे, अल्लाह कबूल नहीं करेगा। याद रखिए, 99% आप कोई काम अल्लाह के लिए करें और 1% कोई दुनिया का फ़ायदा। साहबा ने कहा हम जंग में जाते हैं, हम फी सबीलिल्लाह लड़ते हैं, लेकिन दिल में होता है कि चलो शोहरत भी हो जाएगी, बहादुरी के जौहर का। ये फी सबीलिल्लाह नहीं, अल्लाह 99.99 पे भी राज़ी नहीं होता जब तक इखलास ना हो, पूरे का पूरा खालिस अल्लाह का। आप किसी को गिफ्ट दें, कहता मैं आपके लिए लाई हूँ, वैसे दिल नहीं कर रहा था, ले लेगा आपसे? ये मैं गिफ्ट ले आई हूँ, बस मजबूरी थी ना, फिर क्या करती। अम्मा ने कहा था शादी में इतनी बर्तन तो देनी है, ये लेना देना तो हो गई ना, क्या करें। आप 10 साल पहले हमारे घर शादी में 500 रुपये दे गए थे, अब मुझे 501 तो देने थे, रखते। तो इबादत अल्लाह के लिए क्या है, ज़रूरत है इस बात की कि आपकी मेरी इबादत जो है वो अल्लाह के लिए हो। इखलास रखिए, नमाज अल्लाह के लिए है तो रियाकारी बंदों के लिए, रोज़ा रखे तो तकवा के लिए रखे, ज़कात दें तो कबूलियत के लिए रखे, फिर फ़ायदा होगा। और चौथी शर्त आपको बताई है कि तरीका अल्लाह का बताया हो। हज़रत इब्राहिम ने क्या ख्वाहिश की थी जब खाना काबा बना लिया बेटे के साथ, कि रब्बाना تقبل منا. ہاں لیکن اس کے بعد کیا کہا؟ وارینا مناسکنا. عبادت ایجاد کرنے کی چیز نہیں ہے. عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ طریقہ عبادت آپ خود کر لیں, آج کوئی نئی عبادت کر دے, کوئی نماز کا نیا طریقہ وضع کر دے. نہیں, گھٹنوں میں بہت سارے لوگوں کو دردیں شروع ہو گئی ہیں تو بہتر ہے کہ نماز میں سے رکوع سجدہ نکال دیں. کھڑے کھڑے جیسے جا کے چرچ میں کھڑے ہو کے سینے پہ ہاتھ باندھ کر پڑھتے ہیں, اسی طرح سے ہو جائے ضرورت نہیں. یاد رکھیے, ایک جملہ لکھ لیں کہ عبادت کا لوگوں کی خواہشات اور ان کے تخیلات سے کوئی تعلق نہیں. سورۃ نساء 125 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. ترجمہ نہیں بولوں گی, آپ کو کئی دفعہ یہ آیتیں سنی پڑی ہوئی ہیں آپ لوگوں کی, تو کیا پتہ چلا؟ اخلاص ہونا چاہیے, یکسو ہوں. اور ابراہیم کی یہی خوبی تھی کہ وہ مخلص تھے. بدعت کیوں بری ہے؟ اس لیے کہ وہ دین میں سے اخلاص نکال دیتی ہے. پانچویں شرط, ہم نے پانچواں اصول پڑھا ہے, اعتدال, بیلنسڈ. آپ دیکھیے کہ اسلام سے پہلے کے مذاہب میں عبادت میں غلوف تھا. کس طرح؟ یہود نے سب سے پہلے دنیا کے بارے میں غلوف کیا, اور کس طرح سے اس چیزوں کو رکھا, یعنی لوگوں نے کانسیپٹس غلط کیے نا. ماں باپ کا احترام کرو تاکہ تم زیادہ دیر تک زندہ رہو. یہود کا یہ کانسیپٹ تھا کہ اف یو ول بی گڈ وتھ یور پیرنٹس یو ول لیو لانگ. حالانکہ یہ اللہ اس یہ وجہ تو نہیں ہے نا ماں باپ کو دیکھنے کی. پھر اسی طرح سے اللہ کی عبادت کرو گے تو روٹی پانی میں برکت دے گا اور تمہیں بیماریوں سے دور رکھے گا, عمر بڑھے گی. یہ کانسیپٹ تو آج ہم مسلمانوں نے بھی بچوں کو دیا, بیٹا نماز پڑھو پھر اللہ تمہارا پیپر اچھا کرا دے گا. ایک جملہ بڑا بڑا کر کے لکھ لیں, کبھی اپنے بچوں کو اور خود کو مشروط عبادت پہ نہ لائیں. شرطیں باندھ کر جو عبادت کی جاتی ہے نا وہ عبادت حد سے بڑھ جاتی ہے. پھر نصارہ کا غلوف کیا تھا؟ آپ جا کے آج بھی انجیل کے کچھ ریفرنس دیکھیں تو انہوں نے کیا کچھ نہیں الٹ پلٹ باتیں لکھی ہوئی جس کی ضرورت نہیں. اور پھر سب سے بڑی بات, رہبانیت کیا تھا؟ اعتدال سے بڑا ہوا دین تھا. ان کا ایک راہب تھا مارکیوس, 6 مہینے گدلے پانی کے جوہر میں پڑا رہتا تاکہ اس کے ننگے بدن پر زہریلے کیڑے کاٹیں اور اس کو تکلیف ہو اور اس میں اس کو اجر ملے گا. جی پھر اسی طرح ایک شخص تھا تو وہ کہہ لے کہ ایک بڑا وزن جس کو آپ 100 پاؤنڈ کچھ کہہ لیں اس کو اٹھائے پھرا رکھتا تھا. ایک اور شخص تھا لوسیس اس کا نام کہتے ہیں آتا تھا, تو 200 رتل لوہا ہر وقت اٹھائے رہتا تھا. اسی طرح ایک شخص ہے 3 سال تک خشک کنویں میں پڑا رہا. یہ آپ سورہ حدید کی تفسیر میں, رہبانیہ کی تفسیر میں جا کے پڑھ لیں تو وہاں آپ کو بہت کچھ ملے گا. ایک یوحنا راہب تھا, ان کا 3 سال تک ایک ٹانگ پہ کھڑا رہا اور عبادت کرتا تھا, نہ سویا نہ بیٹھا. جب بہت تھک جاتا تھا تو اپنی پیٹ ایک چٹان کے ساتھ لگا لیتا تھا. تو اسلام تو آپ کو مجھے ایسی جکڑ بندیوں میں نہیں ڈالتا. ایک راہب تھا, کپڑے سرے سے پہنتا ہی نہیں, بال لمبے کیے اور لمبے بالوں کے ساتھ جسم کے پرائیویٹ حصوں کو چھپاتا تھا, اور چھپائیوں کی طرح یوں ہاتھ جیسے بچہ کرال کرتا نا اس طرح چلتا تھا, سیدھا نہیں کھڑا ہوتا تھا. کہتا نہیں جی, شرم کا نظر آئے گی تو آسمان کو دکھے گی. تو جانور کی طرح الٹا ہو کے چلنا. کئی لوگ غاروں میں اور خشک کنوؤں میں کیوں رہتے تھے؟ کہ ہم لوگ کھلے آسمان کے نیچے نہ جائیں. بیوقوفی کی باتیں ہیں. اچھی لگتی ہوں گی یہ باتیں ان کو جن کے پاس کوئی خالص خاص دین نہ ہو. تو اسلام میں عبادت کیا ہے؟ اعتدال کا نام ہے. معتدل ہو کر رہیں گے تو فائدہ ہوگا. پھر آپ دیکھیں کہ آج کرسچینٹی میں ایک ایسا بھی دور گزرا کہ غسل کرنا ان کے ہاں جرم تھا. انہوں نے جب حکومت ملی ان کو مسلم ملکوں میں سے جب آئے تو انہوں نے سارے باتھ روم اور یہ سارے ختم کرا دیے کہ اس سے مسلمانوں کی خوشبو آتی ہے. مراد ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان اتنے پاک ہیں. اور طہارت کیا ہوتی ہے؟ یہ آج اس کے بعد اگلا ٹاپک وہی شروع ہو رہا ہے. پھر آپ دیکھیں گے کہ اسلام کیا کہتا ہے. ایک راہب تھا انتھنی, کہتا ہے کہ میں نے ساری زندگی اب پاؤں دھونے کا گناہ نہیں کیا. اب سوچے ذرا اس کے پاؤں سے کتنی بو آتی ہوگی. ایک ابراہیم راہب کا نام آتا ہے, 50 سال تک اپنے چہرے اور بازوؤں کو پانی نہیں چھوا. آپ خود سوچ سکتے ہیں کیا ہوگا. تو پھر اسلام نے کیا کہا؟ معتدل رہو. سورۃ نور 37, رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. یعنی کچھ لوگ ہیں وہ تجارت کرتے ہیں لیکن نماز کا وقت جب آ جائے تو پھر وہ اسے غافل نہیں رہتے. تو دین اور دنیا رکھنے کا بیسٹ وے یہ ہے کہ آپ عابد بن جائیں. پورا وقت آپ کی زندگی جو ہے وہ اللہ کے حکموں کی ہو. اور اس کی بیسیوں مثالیں موجود ہیں کہ اسلام کیسے بھلائی. हज के सीज़न में क्या कहा, दुनिया की भी भलाई कि ठीक है, रब्बना आतिना फिर दुनिया हसना तो व फिल आखिरत हसना। आपको पता है कि ये आयत कुरान में हज के तनाजर में आई है, दीन भी मांगो दुनिया मांगो, हज करने जा रहे हो लेकिन कुछ अल्लाह की तरफ से फजल भी ढूंढना चाहते हो, कोई चीज़ ले जाओ वहाँ बेच लो वहाँ से ले आओ, कोई गुनाह की बात नहीं, तो दीन मोतदिल है। और छठी और आखिरी बुनियाद जो हमने पढ़ी वो क्या है, आसानी। ये आसानी है कि नमाजी ना पढ़ो, पर्दा नहीं करो, दाढ़ी ना रखो, बड़ी मुश्किल है। याद रखिए कि इस्लाम से पहले तशद्दुद का रुझान था, लोगों में तशद्दुद पैदा हो चुका था और लोग इबादत के नाम पर अपने ऊपर इतनी मुश्किलात रखते थे और उतना ही नेक समझते थे। इस्लाम ने क्या किया, सूरत आराफ 157 अल्लाह के नबी के खसाइस हैं। अभी इस साल भी मैंने आने से पहले उन पर लेक्चर किया था कि अल्लाह के नबी ने जो बोझ और तौक गलों से उतारे थे आज उम्मत ने फिर डाल लिए। ये आपका उसमें वसफ था। और हज़रत आयशा कहती हैं कि जब अल्लाह के नबी को दो कामों में इख्तियार दिया जाता तो आप वो चुनते जो आसान होता, शर्त एक उसमें गुनाह ना होता, और अगर उसमें गुनाह होता तो आप सबसे ज़्यादा परहेज़ करते और सारी ज़िंदगी आपने अपनी ज़ात के लिए किसी से बदला नहीं लिया। हाँ जब कोई अल्लाह की अजमत में खलल अंदाजी करते तो उससे अल्लाह की रज़ा के लिए बदला लेते। ये बुखारी की रिवायत है 6126। क्या पता चला कि दीन एतदाल का नाम है, आसानियों का नाम है। सवाल पैदा होता है कि इस्लाम ने आसानी पैदा करने के लिए क्या चीज़ें लिखी रखी, तो आप 6-7 मिसालें लिख लें कुरान की, ये खुद लिखेंगे आप लोग। नंबर एक क्या है, तहारत के लिए पानी ना मिले तो तयम्मुम कर लो, सूरत मायदा 6। दूसरी बात मरीज़ के लिए रुख्सत। तीसरी बात नमाज में रुख्सत सलात कसर की सूरत में, सुनन निसाई 1434। चौथी सला जिहाद की रुख्सत है, अल्लाह कहते हैं उस पर कोई पकड़ नहीं है जो उज़र की वजह से रुक गया। फिर सफ़र में दो नमाजों का जमा करना, अबू दाऊद 1067। फिर इसी तरह सलातुल खौफ के वक्त में चाहे चलते फिरते भी नमाज़ पढ़ो लेकिन पढ़ लो, सूरह निसा 102, इसकी बहुत बड़ी दलील है, इब्ने माजा में भी है 1258। और रोज़े की रुख्सतें मुसाफिर और बीमार के लिए, सूरह बकरा 185। एक सवाल बनाइए अपने पास, हिकमत क्या है, इबादत में इतनी आसानियाँ क्यों दी गई? क्योंकि देखिए जो चीज़ इंसान के नफ्स पे बोझ पड़ती है ना उससे उसकी रूहानियत ख़त्म हो जाती है। अब मुझे बताएं कि कोई 3 साल एक टांग पे खड़ा रहे, ह्यूमनली देख लीजिए, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, उसकी ब्लड सर्कुलेशन को देखिए, उसके बॉडीज़ के बॉडी के जो मसल्स हैं एक्शन ना करना, या वो पाँव जो ऊपर उठा लेता होगा और फिर दूसरे भी उठाता ही होगा मुस्तकिल एक पे तो नहीं है, फिज़िकली उसको कितने प्रॉब्लम हो जाए, वो तो स्टिल हो जाएगा ना। इस्लाम आपको मुझे ऐसी चीज़ों में नहीं डालता। इससे दूसरा एक नुकसान क्या होता है, राहत पैदा होती है इबादत से, दीन से लोग फिर बुगज रखने लग जाते हैं। फिर इसी तरह से आप देखिए कि बहुत सारे चूके इन मुश्किलों को निभा नहीं सकते तो वो कहेंगे कि फिर हम ऐसे दीन से पीछे हैं। एक सहाबी थे अबू कतादा की तरफ से एक नस्बत है, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं नमाज के लिए खड़ा होता हूँ और मेरा दिल करता है मैं लंबी नमाज पढ़ूँ, इतने में मुझे पीछे बच्चे के रोने की आवाज़ आती है, तो मुझे समझ आ जाता है कि कोई बच्चों वाली माँ भी आई हुई है नमाज़ पढ़ने और मुझे उसकी माँ को तकलीफ़ देना बुरा लगता है तो मैं नमाज़ मुख्तसर कर देता हूँ। ये बुखारी की रिवायत है 6106। आज के माम साहब होते तो क्या कहते, बच्चों को मस्जिद ना लाया करें। ये हल नहीं है बच्चों को मस्जिद ना लाएं, तो फिर जब आप नहीं लाएंगे तो वो घर में अपने सन में ही देखेंगे ना जो उनके हाथों में छोटे छोटे आपने पकड़ा दिए। तो बच्चों को मस्जिदों में लाएं ताकि उनके शैतान दूर हों और उनको इस्लाम का मिजाज दिखे। और एक दुआ भी अल्लाह के नबी ने सिखाई है, बल्कि कुरान की दुआ चले, मैं आपसे पूछती हूँ, इधर नहीं दिया आपको, जान के नहीं दिया रेफरेंस, कुरान की कोई दुआ याद कीजिए, कोई आयत जिसमें इबादत में आसानी के लिए दुआ करते हैं हम। जी और रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वाफ़ु अन्ना, सूरत बकरा आयत 286। आखिरी ये हम दुआ कर रहे होते हैं कि अल्लाह हम पे बोझ ना डाल। तो सवाल पैदा होता है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है देख लीजिए, कि जब हम अपनी मर्ज़ी की मुश्किलें नहीं डालते तो मसनून ही बातें फिर कौन सी हैं? मसनून का मतलब क्या है, किसको पता? देखिए लफ्ज़ मसनून सन्ना से है, इसमें मीम नहीं होता, ये मफूल का वजन है। सीन नून नून, सन्ना या सुन्नू कहते हैं पुराना होने को। कुरान में इसकी भी दलील है, इस पे भी एक प्राइस दूंगी अगर कोई मुझे वो आयत का बस इशारा कर दे। कुरान में लफ्ज़ मसनून जिस रूट से है उससे कोई लफ्ज़ बोलिए। वो तो है ही है, वो तो, और जो मैं सोच रही हूँ वो नहीं है, जिसमें ये मन ही समझ आता है पुराने हो। चले पुराने होने के मानों में, हाँ, हमाय मसनून, लम यतसन्ना, शाबाश। कहाँ है? सूरत बकरा तीसरा पारा। आपको आपका गिफ्ट पक्का हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोनस पर, शुक्र है मैंने ये नहीं बोला क्या दूंगी, तो आप भी दे सकते हैं। है? लम यतसन्ना में क्या, नहीं वो पुराना हुआ, वो गधे पे जो सामान रखा था, हजरत उजैर का वाक्य तीसरे पारे में, तो वहां सन्ना का मानी पुराना है, यही लफ्ज मसनून है। मसनून पुरानी चीज होती है। अच्छा इसका ऑपोजिट क्या होगा? एक और गिफ्ट देना पड़ेगा जी। बिदा का एक और इंग्लिश अरबी में क्या कहते हैं? मैं ही बता दूं, ना ही देना पड़े। मुहदस, मुहदस कहते नई चीज को, हदीस, ठीक है। तो सुन्नत की ऑपोजिट मुहदस, और मुहदस को बिदत कहते हैं। बिदा भी ऐसे में नई चीज को कहते हैं ना। तो मसनून ही बात है, यानी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से चलता आया काम। नंबर एक, नमाज, रोजा, जकात, हज, ये आपको मेरे से पहले पता है इसलिए आप खुद ही लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिससे इंशाल्लाह हम फिर आगे चलेंगे, और वो क्या है, इबादत की शराइत क्या है। बहुत आसान है, जिसको भी नहीं याद होंगी वो उसको आज आप ही याद करा दें। दो लफ्ज़ हैं सिर्फ इबादत की, दो बड़ी शर्तें हैं। नंबर एक, अखलास, शाबाश। इन अल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात। अमिल साले, अमल साले क्या होता है, जिसकी दो बुनियादें होती हैं। नंबर एक, अखलास अल्लाह के लिए करना, किसी और के लिए नहीं, और दूसरी बात, तरीका रसूल का हो, सुन्नत तरीके से हो, इसी को इबादत कहेंगे, इसी के साथ सारा मामला चलेगा। तो अल्लाह ताला ने आपके मेरे लिए ये चीज़ें रख दी, और कितनी ज़रूरत है इस चीज़ की, इसको देखने की, करने की। तो यहाँ पे अभी हमारा इबादत का टॉपिक पूरा हुआ है। आप देखिए कि अभी हम इबादत को सिर्फ छू रहे हैं, इंशाल्लाह इससे आगे तहारत का टॉपिक है। अगर मैं आपको ह्यूस्टन टाइम बताऊं तो अभी 10:52 में है, जो मेरा कंप्यूटर बता के मुझे खुश कर रहा है, और अगर आपका घड़ी का टाइम देखूं तो 11:52 हो गए हैं, तो फिर आपका टाइम होता है तो 52 में 8 डालकर 2 ऊपर डाल के 10-12 मिनट का स्ट्रेच लेकर वापस आ जाए, ताकि आपको फ्रेशली फिर अगली चीज़ों पे लेके चले। जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो क्विक रहिए ताकि आप ज़्यादा ले सकें। ये लाइट्स बंद कर दीजिए। सारे लोग कहते हैं ना कि वक्त नहीं मिलता और वक्त कैसे गुजारें, तो बस जैसे आजकल हम पढ़ने के दौरान और ब्रेक के दौरान फोकस्ड होते हैं ना, और टाइम को नज़र में रखते हैं, ये अगर आपका मेरा मामूल बन जाएगा तो वी विल गेट मोर फ्रॉम लाइफ इंशाल्लाह ताला। शुरू करते हैं अल्लाह ताला से दुआ करते हुए, और साथ ही साथ ये कि आप लोग केयरफुल रहें, क्योंकि ब्रेक के बाद थोड़ा सा तो क्योस होता ही है, लेकिन आप जहनी तौर पे वापस आ जाइए। जैसे अभी हम सीख रहे हैं कि इबादत मुकम्मल फोकस्ड होने का नाम है ना, तो ये ज़िंदगी के छोटे छोटे जो मामले बीच में चलते हैं, ये हमारी ज़रूरियात हैं, हम ह्यूमन हैं। और ये किस बात की दलील है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि अगर अल्लाह सबसे बड़ा है तो हम सबसे छोटे हैं, और छोटे और कमज़ोर इंसान को वाकई ब्रेक्स की ज़रूरत होती है। और घड़ी की सुइयों पे नज़र रख के ब्रेक के टाइम को अगर फॉलो करेंगे ना, तो ये आदत आपको इंशाल्लाह ताला आपकी बाकी ज़िंदगी से भी फ़ायदा उठाने के काबिल करेगी। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, तहारत, बहुत ही अहम टॉपिक है। दीन इस्लाम सफाई सुथराई का दीन है। जब कोई शख्स मुसलमान होता है तो सबसे पहले उसको गुसल करने का हुक्म दिया जाता है, वाजिब होता है उस पर। वजह क्या है कि जहालत और कुफर के दौर में अगर उसने कई दफ़ा ख़ुद को पाक ना किया हो तो उसकी इबादत कबूल नहीं होगी। आप हदीस की बड़ी से बड़ी बुक्स खोल लीजिए, सबसे बड़ी तो उसमें बुखारी की मिसाल है कि सबसे पहले आपको बाप मिलेगा तहारत का, यानी जब भी मामला शुरू होते हैं इबादत के, तो इबादत से पहले तहारत शर्त है। मेरा दिल तो यही चाहा कि मैं सिर्फ़ आज आपको नमाज पे दूँ, कल रोज़े पे, फिर परसों हज पे, फिर ज़कात पे, पर मुझे लगा ये आपके साथ ख़यानत होगी, क्यों? कि ये चीज़ें तो आपको वहाँ इधर उधर और भी बहुत जगह बाद में ज़िंदगी में मिलती रहेंगी, क्योंकि इन मौजूआत पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बात भी होती है, लेकिन वो चीज़ जो बुनियाद है वो तहारत है। तो आज इंशाल्लाह हम डिटेल से तहारत को देखेंगे। कुछ चीज़ें आपके लिए बिल्कुल नई भी होंगी, लेकिन कोई बात नहीं, जो चीज़ें आपको फ़ायदा देंगी, जो आपके लिए अभी फ़ायदेमंद है वो लेंगे, बाकी आप बाद में भी ले सकते हैं। लेकिन कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको यहाँ से इस्लाम का मिजाज भी समझ आ जाना चाहिए कि दीन इस्लाम में हर चीज़ की एक अपनी जगह है। तो अल्लाह ताला हमें इस मौजू का हक अदा करने वाला बनाए। आपकी शीट के ऊपर तहारत के लिए जो जगह बनी हुई है उसको खोल लीजिए। आप अगर शीट्स को सही तरह देखेंगे फिर ही फ़ायदा उठा सकेंगे, वरना आपको इससे फ़ायदा नहीं होगा। तो तहारत क्या होती है, पहले चंद बातें अब तहारत के मौजू पे, फिर उसके बाद देखिए तहारत दो तरह से होती है, एक ज़ाहरी तहारत और एक बातनी तहारत। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर एक शख्स अंदर से पाक हो जाता है, बाहर से गुसल करवा कर उससे दूसरी तहारत हासिल की जाती है जो कि इंसान को बाहर से भी पाक कर दे। दिल में तहारत आती है अखलास से, कलमे तैयबा से, और बाहर की तहारत आती है मसनून तरीक़ों पे, गुसल, वुजू, अस्तंजा और इस तरह की टर्म्स को जो कि आप बचपन से सुनते आए उसको अदा करने से। तो तहारत से मुराद क्या है? नापाकी यानी हदस को दूर करना। सवाल पैदा होता है क्यों, व्हाट इज़ द क्वेश्चन हेयर, हम क्यों तहारत हासिल करें? तो आपकी शीट में आप देख रहे हैं 9 पॉइंट्स विद रेफरेंस हैं, लिख लीजिए। नंबर एक, ये अल्लाह का हुक्म है, तहारत का हुक्म अल्लाह ने दिया। सूरत मुद्दसर 4, क्या कहा था नबी को? वसियाबक फतहर। इसी तरह माईदा 6, फतहरु का लफ्ज़ आता है। फिर दूसरी वजह क्या है कि नबी सल्लम तहारत के लिए दुआएं करते थे, सही मुस्लिम 476 इसकी दलील है। थोड़ा तेज़ बोलूँगी, जो रुक छुट गया वो बाद में आप इंशाल्लाह वीकेंड पे पूरा करेंगे, लेकिन ये कि मैं चाहती हूँ कि मैक्सिमम हिस्सा आप कम अज़ कम यहाँ कवर करें। तीसरी वजह तहारत की क्या है कि तहारत के बग़ैर अल्लाह का जिक्र करना अल्लाह के नबी नापसंद करते थे, अबू दाऊद 17 इसकी दलील है। नेक्स्ट थिंग, नमाज का दूसरा रुक, नमाज इस्लाम का दूसरा रुकन है जिसकी अदायगी के लिए ज़ाहरी तौर पर पाक होना भी लाजिम है, वरना नमाज कबूल नहीं होगी। तो आप कह सकते हैं तहारत क्यों ज़रूरी है? नमाज की कबूलियत के लिए, और दलील है सही मुस्लिम 535। नेक्स्ट, तहारत नमाज की चाबी है, इब्ने माजा 275 में जाकर देख लीजिए। नेक्स्ट, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहले बैत के लिए तहारत का सवाल करते थे। कुरान में भी अल्लाह ने अहले बैत के तस्करे के साथ सूरत अहज़ाब 23वें पारे के बिल्कुल शुरू में इसी तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जिसमें लफ्ज़ तहारत आता है, और ये जो दलील है वो नबी सल्लम की तिर्मिज़ी 3787। फिर अगली बात है, तहारत के बग़ैर कुरान मजीद को पकड़ना जायज़ नहीं, और ये कौन सी तहारत है ये आगे जाकर हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। मौता 419 और निसाई में भी रिवायत है। तहारत के बग़ैर यानी जब इंसान ताहिर नहीं है, बीवी ताहिर नहीं होती, तो मर्द और औरत का ताल्लुक जायज़ नहीं है। सूरत बकरा 222 यस, जिसमें अल्लाह ताला ने हदें मुकर्रर की हैं, यस सलून का नील महीद कुल हुआ अजन, ठीक है। इसी तरह तिरमिज़ी 135। और इसी तरह तहारत को क्यों समझें या इसका क्या ज़रूरी है कि तहारत के बग़ैर औरतें बैतुल्ला का तवाफ़ नहीं कर सकती, ये बुखारी की रिवायत है 305। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि तहारत की फजीलत क्या है? अगर हम पाक साफ़ रहते हैं, क्लीन रहते हैं, प्योर रखते हैं अपने आप को, तो 3 वजूहात आपके सामने लिखी हुई हैं। सूरत बकरा 22:22, इन्नल्लाह युहिब्बुल किसको पसंद करता है? मुतहरीन, अल्लाह ताला तहारत और पाकीज़गी करने वालों को पसंद करता है। फिर दूसरी इसकी वजह, तहारत नेस्फ़ ईमान है, सही मुस्लिम 534। और थर्ड थिंग्स, तहारत में सुस्ती करने वालों का इंजाम बुरा है, बुखारी 216-218। क्या पता चला कि इसकी अहमियत है, फजीलत है। अब अगला क्वेश्चन है कि किन चीज़ों से हम पाक कर सकते हैं खुद को? देखिए, एक है खुद साफ़ सुथरे रहना, यहाँ हम टर्म तहारत पढ़ रहे हैं, तो इस्लाम ने दो चीज़ों से तहारत हासिल करने की हमें इजाज़त दी है। नंबर एक, पानी, सूरत फुरकान 48, मान तहूरा का लफ्ज़ आया है। پاک پانی ہے، خاص طور پہ بارش کا پانی، اور دوسری طہارت والی چیز ہے مٹی، سورۃ نساء 43، بخاری 347 اور ابوداؤد 676۔ کویسچن کیا ہے کہ جو طہارت حاصل کی جاتی ہے یہ کیا ہر پانی سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے؟ مٹی کیا ہر مٹی اور ہر پانی سے؟ تو جواب یہ ہے کہ صرف صاف پانی سے طہارت حاصل کی جاتی ہے، ترمذی 69 میں یہ بات موجود ہے۔ اب چونکہ پانی ایک بہت بڑا طاہر ہے، عربی میں اس پہ بہت ٹرمز ہیں، آپ نے کبھی حدیث پڑھی ہو تو آپ یہ ساری ٹرمز کو میرے سے زیادہ اچھی طرح اس وقت سمجھ جائیں گے کہ پانی ایک بہت بڑا طاہر ہے۔ کل اسائنمنٹ میں آپ کو یہ سوال اس طرح دیا جا سکتا ہے کہ کتنے اسلام میں کتنے طاہر ہیں، تو پانی، تو تھوڑا سا پانی کو دیکھیں، اور اس میں خاص طور پہ پھر بہت سارے آپ کے کویسچنز آ جائیں گے، جواب کیا سوئمنگ پول میں نہا سکتے ہیں، وضو کر سکتے ہیں، کیا کچھ۔ تو پہلی بات یاد رکھیے کہ پانی کی کتنی قسمیں ہیں، دو قسمیں ہیں، نمبر ایک طاہر پاک پانی اور غیر طاہر ناپاک پانی۔ سوال پیدا ہوتا ہے پاک پانی سے کیا مراد ہے؟ وہ پانی نمبر ایک جو خود پاک ہو، دوسری بات پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، یعنی گندگی اور نجاست کو ختم کرے اور ناپاکی کو دور کرے۔ بات واضح ہے؟ نیکسٹ کوسچن کہ ناپاک پانی سے کیا مراد ہے؟ تو نمبر ایک جو خود بھی ناپاک ہو اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی نہ رکھتا ہو۔ مسلم 657، آپ کو یہ دونوں باتوں کی مثال سمجھا دوں کہ کچھ پانی پاک ہوتے ہیں، آپ اس سے غسل یا وضو کر سکتے ہیں کہ اس کو پی نہیں سکتے، یہ بھی ایک فرق ہوتا ہے۔ کچھ اس سے اپوزٹ ہوتے ہیں، مثلاً آپ ڈسٹل واٹر پیتے بھی ہیں تو آپ اس سے وضو بھی کر سکتے ہیں، غسل بھی کر لیں، اگر آپ کے پاس بہت زیادہ فالتو ہے تو جراثیم بھی آپ کے جو ہے وہ ڈسٹل واٹر سے مریں، ماشاءاللہ آرگینک جراثیم ہوں گے تو وہ بھی پھر آرگینک پانی سے ہی جائیں گے نا۔ یہ ٹوٹکے ہیں آج ہمارے، ہم نے اپنے دماغوں پہ کتنا ڈال دیا بوجھ، لیکن بات سمجھ لیجئے کہ پانی جو ہوتا ہے وہ ناپاک کیسے ہوتا ہے۔ چلے اب نیکسٹ کوسچن پہ جائیں گے، آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گا کہ ناپاک پانی کیسے ہو جاتا ہے۔ تین وجوہات احادیث سے ہمیں خاص طور پہ ملتی ہیں، نمبر ایک پانی کی مقدار کم ہو اور نجاست اور گندگی بڑھ جائے، پانی کی بالٹی باہر رکھی تھی، کتا منہ ڈال گیا، ناپاک ہو گیا۔ دوسری کیا ہے کہ اگر پانی کی مقدار زیادہ ہو لیکن گندگی پڑنے کی وجہ سے اس کا رنگ بو یا مزہ بدل جائے، بات سمجھ گئے، تو بھی ناپاک ہوگا۔ تو دو وجوہات بیسیکلی، نمبر ایک تھوڑے پانی میں گندگی پڑ جائے، اور دوسری بات ہے کہ پانی کا رنگ بدل جائے، ذائقہ بدل جائے یا اس میں بو شامل ہو۔ یہ بہت بڑا اصول ہے اس چیز کے لیے۔ مثلا آپ دیکھیے کہ سوئمنگ پول، اب سوئمنگ پول بہت بڑا تھا، اب اس میں کوئی گندی چیز گری اور نکل گئی، اب اس کی یہ ساری ڈائمینشن ہے، اس کو ہم فقہ کی روشنی میں بہت لمبا آگے نہیں لے کے جا سکتے، صرف میں آپ کو سوچنے کا انداز سکھا رہی ہوں۔ سمندر میں کچھ بھی گر جائے سب پاک ہے، سمندر پورا پاک ہے، بہتا پانی پاک ہوتا ہے، آپ وضو بھی کر سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، نہا بھی سکتے ہیں، اس سے آپ فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن پانی کی ناپاکی کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تھوڑے پانی میں کچھ پڑ گیا، آپ دیکھ لیا آپ نے، اب دل تو نہیں مانے گا نا کہ آپ اس کو استعمال کریں، اور چلے پانی کیسے پتہ چلے تھوڑا زیادہ ہے، اس کا رنگ بدل دے، کسی نے یورینیٹ کر دیا پانی میں تو اسمیل آ گئی پانی میں، یا دوسری طرف آپ دیکھ لیجئے کہ کیا ہوا اس میں کلر چینج ہو گیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، تھوڑے پانی میں برائی کا، گندگی کا اثر زیادہ دکھتا ہے، تھوڑے باقی میں کم۔ نیکسٹ کوسچن کیا ہے، آپ کے پاس شیٹ کا اگلا پیج کھول لے، وہ کیا ہے کہ پانی کی زیادہ مقدار سے کیا مراد ہے؟ اب یہ بھی ایک بار بار سوال دین میں آ رہا ہے کہ پھر کم زیادہ کس کو کہیں گے آپ، تو اس کی بھی شریعت نے ہمیں حدیں دی ہیں۔ پانی کی زیادہ مقدار سے مراد دو قلے، دو قلے کتنے ہوتے ہیں؟ 200 وصف، آپ وہ بھی نہیں پتا تو وہ ہوتے ہیں 210 لیٹر پانی، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے 517۔ تو کیا سمجھ آیا؟ اگر پانی 210 لیٹر سے کم ہوگا تو اس پہ سارے وہ رولز آئیں گے جو تھوڑے پانی والے ہیں، اور اگر 210 لیٹر سے زیادہ ہے تو انشاءاللہ وہ پھر پاک رہے گا، وہ تھوڑا پانی نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو مجھے حدیث سے بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، और ज़्यादा पानी की कोई हद नहीं है, वो जितना भी हो वो गंदा नहीं होगा। समंदर का पानी बहता रहता है, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ उसमें से वो गंदगी निकलती जाती है। अब एक क्वेश्चन और भी है, पानी तो समझ गए, आप जब भी किताबो तहारा पढ़ेंगे तो बर्तनों का जिक्र बहुत आएगा। आपके जहन में कुछ सवाल हैं बर्तनों के बारे में? हम सोने चांदी के बर्तनों में खा सकते हैं कि नहीं, और शराब रखने वाले बर्तन, और सबसे बड़ी बात नॉन मुस्लिम्स के बर्तन में खा सकते हैं कि नहीं? तो चंद बातें बर्तनों के नाते से देख लीजिए। नंबर एक, पानी किस बर्तन में रखना और इस्तेमाल करना जायज़ है? नंबर एक, सोने और चांदी के सिवा हर किस्म के पाक बर्तनों में पानी रखना और इन बर्तनों को इस्तेमाल करना जायज़ है। बुखारी की रिवायत है 5831 5633। क्या पता चला कि पानी को हमेशा किसी भी ऐसी चीज़ के कंटेनर में रखा जा सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सोने और चांदी के बर्तन में पानी रखा हो तो क्या आप इससे तहारत हासिल कर सकते हैं? हो जाएगी तहारत लेकिन पसंदीदा नहीं है। रिवायत जाके डिटेल से पढ़ेंगे तो बात समझ आएगी। सही बुखारी 5634 और मुस्लिम 5385। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या काफिरों के बर्तन और कपड़े इस्तेमाल किए जा सकते हैं? मतलब लंडे के कपड़ों में से कोई लेकर अगर इस्तेमाल करता है, या कुफार ने बर्तन इस्तेमाल किए और फिर उसको सेल कर दिया, गैराज सेल बोलते हैं गालिबन इधर, यानी कह लीजिए कि कुछ भी इस्तेमाल शुदा बर्तन किए जा सकते हैं। तो अगर इसको नए बर्तनों पे लूँ तो फिर तो हमारे सारे ही पायरेक्स वायरेक्स ख़त्म हो गए। आज तो हम इम्पोर्टेड बर्तन लेते हैं, तो पहली बात है कि इम्पोर्टेड बर्तन भी कुफार के ही बने होते हैं। यहाँ मुराद के इस्तेमाल शुदा बर्तन, किसी के घर गए, आपकी दोस्त है, कुली है, नेबर है, तो जवाब इसका यह है कि काफिरों के बर्तन और कपड़े इस्तेमाल किए जा सकते हैं जब तक के उसमें ये यकीन हो कि नापाकी नहीं है। बुखारी की रिवायत 5488 नंबर है, यानी उसको धो लीजिए उसको इस्तेमाल करने से पहले, और अच्छी तरह से उसमें से कोई इम्प्योरिटीज़ जो है उसको ख़त्म कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या चमड़े में पानी रखा जा सकता है? आपने भी कभी देखी होगी, मश्क बोलते हैं जिसको, तो हलाल और पाक जानवर के चमड़े में पानी रखा जा सकता है। हलाल और पाक कौन से हैं वो आपको बताइए। क्या मुर्दार के चमड़े में पानी रख सकते हैं? अब आप देखिए, ये मुर्दार के चमड़े से, ज़रा से मैं आपको आज के दौर के भी इशू समझा दूं, पर्सिस जूते जी, है ये इशू किसी का? सांप की खाल के पर्स होते हैं, बहुत महंगे होते हैं, और जूते होते हैं, और इसी तरह पिक की जो खाल है उसके लिए, इन सब को समझ लीजिए। असूलन अभी आपका जो, क्योंकि आपने ना मैंने जाके चमड़े के सैक्स में पानी भरना है, क्योंकि ये इश्यूज आज नहीं है। आज बस सिंपल इश्यू ये है कि हराम जानवर है, चीता है, शेर है, गीदड़ है, जो भी जानवर यानी वैशी किस्म के हैं, तो क्या उनकी खाल या उनकी स्किन या लेदर जैकेट उनकी जो है वो उसको इस्तेमाल कर लें? तो इसमें पहली बात समझिए, ऐसे जानवर जिनका गोश्त हलाल है लेकिन इन्हें ज़िबा नहीं किया गया, ठीक है, यानी गाय हलाल है ना, लेकिन उसको ज़िबा अच्छी तरह नहीं किया गया मसलन, अब इसके चमड़े में का बर्तन बने, अरब जो लोग थे इसके बर्तन बनाते थे, प्याले होते थे चमड़े के, इसी तरह से थे, या वही बात है मश्क है, गीली चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, यानी लिक्विड जो टच होता है, ठीक है, लेकिन दबागत, दबागत कहते हैं आज के दौर में टैनिंग को, टैन कर देते हैं ना ऊपर, चमड़े के ऊपर कोटिंग हो जाती है, उसको साफ करते हैं, धो नहीं सकते चमड़े को, पानी लगे तो ख़राब हो जाता है, जब उसको ऊपर कोई कवर कर दिया जाता है कोटिंग, या उसके ऊपर से वो चीज़ें हटाकर दूसरी है, इसको दबागत कहते हैं असल में अरबी में, उसके बाद फिर खुश्क चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपका सवाल फिर पीछे हो सकता है, जहन में क्लियर ना हुआ हो कि क्या हम ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसका जवाब ये है कि अगर आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें और वो अपनी असल शक्ल में है, मतलब पिक की खाल है, नहीं इस्तेमाल कर सकते आप, इसी तरह से कोई और गंदी चीज़ है नहीं कर सकते, लेकिन अगर उसको पूरे, पहली बात है ज़रूरत क्या है, आपको पता है कि अगर 100 रुपये का पर्स है तो वो 1000 का पर्स होगा, लिखा होगा उस पर ये फलां खाल से बना है, ये सिर्फ स्टेटस कॉन्शियस है। एक ये भी मिजाज बदलने की ज़रूरत है, महंगी चीज़ें, यानी महंगाई का मैार क्या है, मैं अक्सर सोचती हूँ, जैसे किसी ने मुझे एक दफ़ा बताया कि एक पर्स था, तो वो छोटा सा पर्स था तो $2000 का है, तो मैंने कहा जब पर्स ही खरीद लिया तो इसमें डालना क्या फिर, गाड़ी डालते हैं ना बेचारे कर्जे के लिए रखे हुए, कि आप $2,000 का पर्स, आप सोचें जरा, फिर आप वो पर्स हाथ में पकड़ेंगे कि लॉकर में रखेंगे, बेकारियत है। अपनी जान पे बोझ डालना है, मुस्लिम का ये मिजाज नहीं है। जिस चीज़ से फ़ख्र और दिखावा और शोहरत हो। मुझे किसी ने एक दफ़ा एक ऐसा पर्स दिया, बड़ा मुझे पता था असल में कि लोगों के मुंह से सुना था, और मैंने कई दफ़ा दरसों में उसका नाम भी लिया था। किसी दिन मुझे किसी ने गिफ्ट में दे दिया, मुझे लगा ये खंजीर के गोश्त से बना होगा, अगर मैंने पकड़ लिया तो लोग कहेंगे अच्छा जी ये इन्होंने पकड़ा हुआ ये पर्स, अब उनको क्या पता मैंने कहाँ से लिया दिया। खैर वैसे भी मुझे जो आदत है जो मैं करती हूँ, मैंने वो पर्स आगे से किसी और को गिफ्ट में दे दिया, तो वो कहे आपको पता है आप मुझे क्या दे रही हैं? मैं कहा मुझे पता है मैं आपको क्या दे रही हैं, आप खुद ले दे। मैंने कहा मेरा मैंने कहा मेरा ये मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है। कहती नहीं ये बहुत महंगा होता है। मैंने कहा इसलिए तो मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है, लोगों को क्या पता। तो हमेशा मॉडरेट बन के रहें, आपके सारे सवाल ही खत्म हो जाएंगे। बी मॉडरेटेड, बीच में रहें, कभी पुराना पहने कभी नया पहने, कभी फटा हुआ पहन ले कभी उधड़ा कभी बहुत अच्छा भी पहन ले, लेकिन ये चीज़ें बहरहाल। शरण जो है इसकी डिटेल्स इंशाल्लाह ज़िंदगी में आपको कभी फिर मौका मिलेगा तो आप इससे फ़ायदा उठाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नजासत। ऑफ कोर्स तहारत पढ़ें तो अल्लाह के नबी ने कहा कि चीज़ों को उसकी ऑपोजिट से पहचानो, तो तहारत का ऑपोजिट नजस चीज़ होती है, नजासत है। तो नजासत से क्या मुराद है? फर्स्ट क्वेश्चन, वो गंदगी जो इंसान के कपड़ों को या बदन को लग जाए या किसी जगह वो गंदगी मौजूद हो, तो जब तक उसको दूर ना किया जाए जिस्म कपड़ा या जगह पाक नहीं होते। मसा आप देखिए, पखाना, पेशाब, किसी जानवर का फुजला, कुत्ते का चाट लिया जाना, आप जा रहे थे कुत्ते ने लेक कर लिया अगर बर्तन कपड़े को, या आपके सामने कुत्ता किसी चीज़ के बर्तन में मुंह डाल रहा है, तो इन सब को ना यहाँ दो तीन हिस्सों में बांटा है। आप देखिएगा एनी चीज़ें क्या होती हैं जिनको देख सकते हैं, आंखों से दिखती हैं। दिखने वाली चीज़ों की कितनी किस्में? तीन चीज़ें हैं। नंबर एक जानदार, मुर्दार और जामिद यानी गैर जी रूह चीज़ें। क्या पता चला कि वो चीज़ें जो आंखों से नज़र आती हैं और उसकी गंदगी को आप महसूस कर सकते हैं, वो ये तीन हैं। नेक्स्ट क्या है कि जानदारों की कितनी किस्में? दो, पाक जानदार और नापाक। अब इसमें जानवर भी है तो जानवर है, जानदार है तो जानदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नापाक जानवर कौन से हैं? अरबी जुबान में याद रखिए कि नापाकी के लिए हम आप अपनी अक्ल से नहीं सोचेंगे, कुरान और हदीस से लेंगे। आज मैं ये जुमला क्यों बोला? लोग कहते हैं आजकल तो पिग बहुत साफ़ सुथरे होते हैं, उनको शावर दिलाते हैं, उनके बाल शेव करते हैं और उनको धोते दिलाते हैं, तो ये जुमला आपको तहारत का एक बेसिक असूल समझा जाएगा। पाक और नापाक में मेयार ज़ाहरी सफाई दिखाई नहीं है। आजकल तो शराब भी बड़ी पाक है, कितनी डिस्टिल्ड है, कितने पैस्चराइज सिस्टम से गुजर के आती है, तो क्या वो अच्छी हो गई? कल वो उसकी बू भी ख़त्म कर दें बिलफर्ज़, तो क्या वो पाक होगी? तो ये असूल जो अल्लाह ने अभी ज़ुबान से निकाला है, इसको जमा कर लें, तहारत या पाकी नापाकी का मेयार कुरान और सुन्नत। जो बात अल्लाह के नबी ने हदीस में या कुरान में हमें बता दी वो पाक है और दूसरी नापाक है। तो फिर नापाक जानवर कौन से हैं? नंबर एक कुत्ता और नंबर दो सुअर और इनसे पैदा होने वाले जानवर। दूसरी हर वो परिंदा या चौपाया, बीस, जो बिल्ली से बड़ा हो और इनका गोश्त ना खाया जाता हो। अब बिल्ली से बड़ा हो को आप छोड़ दीजिए, यानी दरिंदे जिसको कहते हैं, यानी जू महलब का लफ्ज़ अरबी में आता है पंजों से शिकार करने वाले, जैसे गिद्ध है, गंदगी खाता है ना, मुर्दार खाता है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि जिनके लंबे लंबे नाखून हैं, ये आप मेरा ख्याल है समझ भी चुके हैं, सूरत मायदा और सूरत अलनाम और सूरत नाहल में भी फिर आगे जिक्र इसका आता था। सारी बात का खुलासा कि वो जानवर जो चीर फाड़ करते हैं और वो जानवर जो पंजों से शिकार करते हैं ऐसे नाखूनों से, ये जायज़ नहीं है। अब सवाल पैदा होता है, कुत्ता है इतना मासूम इतना प्यारा, तो फिर एक लॉलीपॉप का चूसपा उसके मुंह में और दूसरा अपने मुंह में, और कुत्ता है क्यों और बिल्ली क्यों? ये है ना आज की जनरेशन के सवाल। काल अल्लाह व काल रसूल, दैट्स इट। जिसने कुत्ते को बनाया उसने कुत्ते के बारे में हुक्म दिया, क्या अल्लाह से ज्यादा आप और मैं उससे प्यार करते? बिल्ली क्यों जायज़ हो गई और उसके तो मुंह में बाल होते हैं, तो अल्लाह के नबी ने उसकी भी बता दी। बिल्ली का सवाल हुआ था, फरमाइन्नहा मिनत तौफीन, ये इर्द गिर्द फिरती रहती है। अब इस अगर बिल्ली हराम होती तो फिर यूरोप में तो आप नहीं रह सकते थे, राइट? बिल्लियाँ इधर उधर होती हैं, तो बहरहाल अल्लाह का जो हुक्म है वही ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। आप देखिए कि नापाक जानवरों जानवर कौन से हैं, नापाक जानवरों का हुक्म क्या है, ये भी एक क्वेश्चन है। नापाक जानवरों का पेशाब, पखाना, लुआब, पसीना, मनी, दूध जो उनकी हवा निकलती है, और कै, सब नापाक है, ये भी एक क्वेश्चन है। अच्छा, सुअर का गोश्त तो नहीं खा सकते, तो क्या फिर उसकी फैट भी हराम है क्या? वो तो अलग है। सीधी सी बात है, जो जानवर हराम है उसका सब कुछ हराम है। अल्लाह ने बहुत वाज़े हुक्म दे दिया। नेक्स्ट क्या है, नापाक जानवरों जानदार कौन, सॉरी, पाक जानदार कौन से हैं? अब नापाक की तो बात है, तो याद रखिए शरीयत का एक असूल है, हर चीज़ अपनी असल से पाक है। असलुल शैयुन मुबाहन, हर चीज़ अपनी असल से पाक है, इल्ला ये कि उसकी कोई नस मौजूद हो, बस। तो पाक जानदारों में इंसान, ऑफ कोर्स, लकद खलक नर इंसान नफी अहसनी तकवीम, ठीक है। फिर दूसरी बात ये है, हर वो जानवर जिसका गोश्त हलाल है उसका सब कुछ हलाल है। और तीसरी बात, वो जानवर जिनसे बचना मुश्किल हो वो भी पाक है, जैसे भी आपको बिल्ली की मिसाल दी है। कुछ और भी इसकी डिटेल्स हैं जिसकी आपको फिलहाल ज़रूरत नहीं है। अब इंसान का लफ्ज़ आया, तो क्वेश्चन ये है कि इंसान के बारे में क्या हुक्म है, इंसान का क्या हलाल है क्या हलाल नहीं है? क्योंकि आप देखें ना, इंसान है, अगर आप किसी चीज़ को टच करते हैं, इंसान अपनी असल से है, तो याद रखिए कि इंसान का पसीना हलाल होता है। यहाँ अब आपको एक दो चीज़ें ज़रा थोड़ी सी मुश्किल लगेंगी, लेकिन एक है हमारी तबीयत का इकराह और एक है हलाल और हराम का मसला। पसीना आ जाए, जिस्म को लग जाए, कपड़े को लग जाए, कुरान पढ़ रहे थे हाथों में पसीना आ गया, डोंट वरी एट ऑल। लुआब, थूक, गंदी तो लगती है लेकिन थूक किसी कपड़े बर्तन पे किसी चीज़ पे लग जाए कोई हर्ज नहीं। फिर इसी तरह से नज़ला, ज़ुकाम के रास्ते से जो मुंह से नाक से जो निकलता है ये पाक होता है, पसंद कोई नहीं करता। लेकिन आप मसला फिर समझ लीजिए, इसका ये नहीं मतलब कि इसको लगते ही रहने दें और बहते ही रहने दें, ये मुराद नहीं है। देखिए तहारत का होना, तहारत जो है, यहाँ हम इस एंगल से पढ़ रहे हैं कि जिस पे हमारी इबादत की कबूलियत है। एक मिनट, सुनते हैं इसको। जी, फिर आप देखिए कि, यानी आप समझ रहे हैं ना, बिलफर्ज, देखिए मैं आपको मिसाल दूं, जुकाम नापाक होता तो फिर हर वक्त गुसल करना पड़ता ना, तो लिहाजा जो भी ऐसी जिस्म से सेक्रीशन निकलती है वो जायज़ है। फिर इसी तरह औरत का दूध, अपने कपड़े को लग गया, बच्चे को फीड कराती हैं जब माएँ, तो बाज़ दफ़ा एक्स्ट्रा दूध जो है वो जिस्म से निकलता है किसी जगह लगे आपके, क्या मैं अब इन कपड़ों में पानी पी नमाज़ पढ़ सकती हूँ? पढ़ सकते हैं, पाक होता है। फिर इसी तरह रीट, बलगम, फिर इसी तरह से एक सेक्रीशन औरतों के जिस्म से निकलती है, जैसे लिकोरिया आप कह लेते हैं, किसी हद तक वो मतलब सेक्रीशन जो बग़ैर ख्वाहिश के पैदा होती है या मजबूरी है, तो वो भी पाक है। इसी तरह मनी और मजी का एक फ़र्क होता है, ये जब आप इंशाल्लाह डिटेल से हदीस में पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। लेकिन ये है कि शौहर बीवी के ताल्लुक़ में ख्वाहिश के वक्त या उससे पहले जो सेक्रीशन है वो पाक है, लेकिन जो आखिरी रिजल्ट है वो नापाक है। अब इसकी मज़ीद डिटेल की फ़िलहाल आपको ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी रही और आप आगे इल्म में बढ़ते जाएंगे तो आप इस तरह की बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि इंसान के जिस्म के तमाम अज्ज़ा और सोए हुए शख्स के मुंह से जो बहने वाला पानी है, राल जिसको बोलते हैं, ये भी पाक है। फिर इसी तरह से नापाक क्या है, पेशाब, पखाना, मजी, वदी और खैस का खून, पीरियड्स का ब्लड। क्या मुर्दा नजस होता है? क्वेश्चन है, एक मुर्दा नजस नहीं होता। हदीस में बुखारी 283, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोसा दिया था हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने, आप पढ़ चुके हैं अशरा मुबशरा में, तो नापाक इंसान यानी डेड बॉडी को हाथ लग जाए तो क्या हाथ धोने पड़ेंगे? अल्लाह अकबर, अगर हमें इसका दुनिया में यकीन आ जाए तो फिर बात क्या बने। बहरहाल नेक्स्ट चलिए, जिन जानवरों का गोश्त हलाल है उनके बारे में क्या हुक्म है। जिन जानवरों का गोश्त हलाल है तो क्या फिर उनका सब कुछ हलाल है? दिस इज़ अ क्वेश्चन. ऐसा नहीं है. आप देखिए ज़रा से इसको समझिए, ये बहुत ही, फिर आप इसमें ज़्यादा क्वेश्चन ना कीजिएगा ना सोचिएगा, क्योंकि ये बातें तब तक समझ नहीं आएंगी जब आप इसकी फिर इन डेप्थ ना पढ़े. लेकिन चूंकि खुलासा देना मकसूद था, तो जिन जानवरों का गोश्त हलाल है उनका पेशाब, लीथ, मनी, दूध, पसीना, लुआब और इस तरह की चीज़ें भी पाक है. एक वाक्या आता है हदीस में कि कुछ लोग बीमार हुए थे तो नबी सल्लम ने उनको ऊँट का दूध और गोश्त मिला, सॉरी दूध और पेशाब मिलाकर इस्तेमाल करने का हुक्म दिया. ये सही हदीस है बुखारी की. बहुत सारे लोग आज उस पर बहस करते हैं, पाक होता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है जी. वो जानवर जिनसे बचना मुश्किल है उनके बारे में क्या हुक्म है, यानी जिनसे आप बच ही नहीं सकते, तो उनके बारे में भी वही बात है कि वो हलाल है. फिर इसे मुर्दा जानवर या मुर्दार, ये है असल में यहाँ का एक अजीब बड़ा इशू कि इसके बारे में क्या हुक्म है, जिसको आप क्या कहते हैं कि जो जानवर खुद मर गया. तो याद रखिए दो, नंबर एक मछली और टिड्डी. टिड्डी किसको कहते हैं? लोकस को. ये दोनों हलाल है. इसके अलावा जो मुर्दार खुद मर जाएं वो हराम है. यानी सी फूड को कह लीजिए, इसका भी एक सिंपल सा रूल लिख लें, फिर जो जिसको जितना मिल गया उसे ले लीजिएगा. और वो क्या है कि वो जानवर जो पानी से निकालते ही मर जाए उसको बग़ैर ज़िबा किए खाना भी हलाल है. और वो जानवर जो पानी के बाहर भी ज़िंदा रहते हैं, मसलन फ्रॉग, मेंढक, पानी में भी ज़िंदा, पानी के बाहर भी ज़िंदा, कछुआ, टर्टल बोलते हैं टर्टल, पानी में भी ज़िंदा पानी के बाद भी, तो वो हलाल नहीं होगा. ठीक है, जो जानवर सी फूड में से बाहर निकलने से मर ना जाए वो फिर इस मद में नहीं आएगा. तो क्या कह सकते हैं आप मुर्दा के लिए क्या है? मछली और टिड्डी के सिवा हर जानवर के मुर्दा नापाक है. फिर वो जानवर जिसमें बहने वाला खून नहीं होता, बिच्छू है, चींटी है, मच्छर है, ये भी, यानी इनको भी ज़्यादा डेप्थ में आप ना समझें तो बेहतर है. लेकिन बहरहाल ये है कि चींटी कहीं घर में घुसे, पाक है, चींटियाँ बुरी नहीं होती. अब आपको बुरी तो लगती हैं, और इसी तरह से आप देखिए चींटे, कॉकरोच, अब क्या करेंगे? अगर ये नापाक होते तो फिर तो सारा दिन ही घर को धोते रहते आप. जर्म्स वाला होना और बात है, उससे कोई नुकसान होना और बात है, लेकिन बहरहाल ये है कि ऐसी चीज़ों को मतलब अल्लाह ताला ने बहुत सख्त रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं रखे. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जामित यानी गैर ज़ीरो चीज़ों का क्या हुक्म है. अभी तक हमने जो चीज़ें देखी ना, ये ज़िंदा है ना जानवर वगैरह, जामित वो जो स्टिल है, मसलन जी नॉन लिविंग कह लीजिए, बिल्कुल. बस आप देखिए ज़मीन और पत्थर वगैरह सब पाक है, मट्टी पाक होती है. और इसी तरह की आप कह लीजिए कि चीज़ें अपनी असल के अतबार से जिस पे कोई वजह ना आ गई हो, मसलन पत्थर है, घास है, सब्ज़ा है, ये सब पाक होती हैं, इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए. फिर पाक खून कौन सा है, ये भी एक क्वेश्चन है कि क्या ब्लड सही है. देखिए कई कौमें ऐसी हैं जो खून पीती भी हैं. एक तो हमारे यहाँ खून पीते हैं ना बच्चे और ससुराल, तो ये फिक्र में नहीं आता, ये मामलात में पड़ेंगे, उसके लिए आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा और खून पी जाऊंगी है, तो ये मुहावरे फिर निकाल दीजिए. लेकिन पाक खून दो हैं. नंबर एक आप देखिए वो खून जो ज़िबह करने के बाद जानवर से निकले. आप ईद कुर्बान पे ये देखते होंगे कि स्लॉटर करके थोड़ी देर छोड़ दिया जाता है, सारा खून निकल जाता है गंदा, लेकिन थोड़ा सा बीच में जो बाद में आता है ना, दमम मसफूहा का लफ्ज़ आता है सूरत अल अनाम में. ठीक है, बहता हुआ खून वो नापाक है, बट वो खून जो बाद में जिस्म से निकले वो. और दो लफ्ज़ लिख लें, तिली, तिली को क्या कहते हैं? स्प्लीन, स्प्लीन जायज़ है. और कलेजी, कलेजी पूरा ब्लड होता है, आपको पता होगा, इट्स जस्ट लाइक क्लॉटेड या कंसनट्रेटेड ब्लड है, ये जायज़ है. आप सबसे पहले खाते ही कुर्बानी के बाद क्या कलेजी खाते हैं ना, तो ये दो पाक है, इसके अलावा नहीं है. ठीक है, फिर इसके बाद आप देखिए कि वैसे जो खून है वो क्या है. खून, पीप और कच लहू सब नापाक हैं. अगर ये चीज़ें किसी पाक जानवर की हैं तो थोड़ी सी मिकदार हो तो इट्स ओके, ज़्यादा होगा तो नापाक होगा. हलाल जानवर का वो हिस्सा जो इसकी ज़िंदगी में काट लिया, मसलन बकरे की टांग काट ली, ज़िंदा बकरे की, तो वो नापाक होगी. سلاٹر کرنا لازمی ہے. پھر اسی طرح علقہ جمع ہوا خون ناپاک ہے, مدغہ لوتھڑا بھی ناپاک ہے. یہ زیادہ ڈیٹیلز ہیں آپ کے حق حساب سے میرے حساب میں, لیکن صرف یہ دیکھ لیجئے میں ان ساری چیزوں کو آج پڑھاتے ہوئے کیا سوچتی ہوں. الیوم اکملت لکم دینکم, اللہ کا وعدہ سچا ہے نا. آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں قرآن سنت سے ساری باتیں نہیں سمجھ آتی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ اور لوگوں کو کچھ کرنا پڑا اور کرتے ہیں, تو یاد رکھیے قرآن اور سنت دو ایسے چشمے ہیں, ان سے سیراب ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ کی زندگی میں باقی چیزیں بھی بچتی جائیں گی اور آپ کو کسی سے ضرورت نہیں ہوگی. کوشچن یہ ہے, چھوڑیے نجاست کیا ہے کیا نہیں وہ پتہ لگ گئی, صاف کیسے کریں؟ اب آپ کہیں گے بس ٹوٹی کے نیچے رکھ دیں اور اوپر سے بہانا شروع کر دیں پانی. ہاں تو نجاست سے پاکی حاصل کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ چار طریقے آپ کے سامنے. نمبر ایک, نجاست کو پاک پانی سے دھو ڈالیں جیسے ہم کرتے ہیں, پانی ہے تو دھو لیجئے. نمبر دو, اگر نچوڑنا ممکن ہو تو دھونے والے پانی سے باہر نچوڑا جائے, یعنی نچوڑ سکتے ہیں کوئی گندگی ایسی لگ گئی تو جو پانی جس سے آپ نے دھویا تھا نا اب اس کو جا کے نچوڑ بھی لیجئے, مطلب اس کا جتنا اثر نکل جائے. دھونا ہی ممکن نہیں اس چیز کو, آپ کے کسی ایسے برتن پہ کپڑے پہ یا بیگ پہ لگ گئی گندگی دھوئیں گے تو خراب ہو جائے گا, تو کھرچ لیجئے. تیسری چیز کھرچنا, اسکریچ کر لیجئے اس کو. اور کتے کی نجاست اگر لگے تو 7 بار پانی سے دھوئیں اور 8ویں بار صابن یا مٹی سے, مٹی کے ساتھ بھی دھو سکتے ہیں. یعنی کتا برتن میں منہ ڈال لے تو اس برتن کو 7 دفعہ دھونا ہوتا ہے. اب آپ کے 7 کیوں, 2 کیوں نہیں, 6 کیوں نہیں, 10 کیوں نہیں, تو جواب قال اللہ و قال رسول, دیٹس اٹ. نیکسٹ کوشچن, زمین پر پڑی نجاست اگر بہنے والی ہے تو پاکی کیسے حاصل کی جائے؟ مثلا دیکھیے پیشاب, تو اس پر یعنی کوئی آیا اور اس نے ایسی جگہ پہ پیشاب کر دیا جہاں نیچے مٹی تھی, تو کیا کریں گے؟ اس پر اتنا پانی بہا دیں, نمبر ایک رنگ ختم ہو جائے پیشاب کا اور بو آنی ختم ہو جائے. صحیح مسلم کی روایت 661. پھر نیکسٹ ہے کہ زمین پر پڑی نجاست اگر بہنے والی ہے تو پاکی کیسے حاصل کی جائے؟ تو اس کے لیے کیا جواب ہے کہ مثلا گندگی ہے, پخانہ ہے باہر گلیوں میں جنگلوں میں کہیں گئے, تو اس کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس کے اثر کو ختم کرے, یا تو اس پہ مٹی ڈال دیں اس کو ڈم کر دیں, یا پھر اوپر کوئی اور چیز ڈال کے اس کو اس طرح اسکرمبل کر دیا جائے کہ اس کے اثر سے زیادہ مٹی آ جائے. مٹی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت زیادہ پاکی کی چیزیں رکھی ہیں. پھر اسی طرح سے ایک کوشچن کیا ہے کہ زمین پر, کیا کوشچن ہے بولیے ذرا جی, اگر زمین پر پڑی نجاست وجود رکھتی ہے تو پاکی کیسے, یعنی نظر آ رہی ہے جگہ تو اس چیز کو وہاں سے ہٹا دیجئے, کسی بھی طریقے سے اس کو وہاں سے الگ کر دیں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ بعض دفعہ کرنا ضروری ہوتا ہے, یہ کر سکتا ہے بندہ بعض جگہ نہیں کر سکتا, لیکن بہرحال اس کو ہٹانا ہوگا. اگر نجاست کا دور کرنا بغیر پانی کے ناممکن ہو پھر کیا کریں؟ پانی ڈالنا ہی پڑے گا, تو پھر کیا کرے؟ پانی سے دھوئیں, چاہے چیز خراب بھی ہوتی ہے تو ہو جائے. یہ مسلم کی روایت ہے 675. پھر نجاست کی جگہ بھول گئے, بچے نے پیشاب کیا بھول گئے, یا کوئی ایسی سیکریشن جسم کی لگ گئی کسی بستر پہ کوئی ایسی جگہ پہ, تو کیا کیا جائے؟ پھر اس کا جواب کیا ہے کہ اگر نجاست کی جگہ بھول جائے تو اتنی دور تک, یعنی کہاں خراب گندگی تھی وہ نہیں سمجھ آ رہی, تو کم از کم اتنا سائڈوں سے اور دھو دیجئے جہاں تک یقین آ جائے کہ یہ بھی حصہ اس پہ کوئی چھیٹے پڑے ہوں گے, کوئی ایسی گندگی لگی ہوگی. پھر اس کے بعد کیا نیت شرط ہے؟ آپ کسی چیز کو پاک کر رہے ہیں تو کیا نیت کریں گے اس کے لیے کہ کریں گے؟ نہیں, شرط لازم نہیں ہے. مثلا آپ دیکھیے کہ باہر کوئی جگہ پہ گندگی تھی, بارش ہو گئی تو بارش سے ساری نجاست دور ہو گئی, تو وہ چیز پھر جس پہ نجاست لگی تھی, برتن تھا کوئی, گملہ تھا کوئی, پاٹ رکھا ہوا تھا, تو وہ پاک ہوگا, آپ کی شرط لازمی نہیں ہے. نجاست کو چھو لیں تو کیا ہوتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے, اس پہ ایک انشاءاللہ مدرس وتھ کڈس کا مسئلہ بھی بتاتی ہوں ابھی. سوال کیا ہے؟ کیا نجاست کو چھو لینے سے یا روننے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ وضو نہیں ٹوٹتا. نجس چیز کو چھونے سے یا اس کے اوپر پاؤں لگ گیا تو وضو نہیں ٹوٹتا, اور جس کپڑے یا جسم میں کہیں لگی ہو اسے دور کرنا ضروری ہوتا ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 668. یعنی صرف چھونے سے یا ٹچ کرنے سے نہیں, جیسے اب لوگ سوال کرتے ہیں کتا گزرتے ہوئے ٹچ کر گیا, اگر اس کی فر اس کے بال آپ کو ٹچ کر گئے اٹس اوکے, کوئی بڑی بات نہیں. ہاں کتا اگر منہ ڈال کر لک کرے آپ کے کپڑوں کو چاٹنے لگے تو پھر وہ ناپاک ہو جائے گا. اب جہاں میں نے جو سوال کیا ہے, اور خود اس میں نہیں لکھا لیکن مدر وتھ کڈس, بہت ساری مائیں یہ سوال کرتی ہیں, ہم باوضو ہوتی ہیں تو ہم اپنے بچے کو کیسے پاک کریں. آگے وضو کا ایشو آ رہا ہے, اس میں انشاءاللہ اس کا جواب ملے گا کہ وضو ٹوٹتا کیسے, بچے کو صاف کرنے سے یا پیمپر چینج کرنے سے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں, وہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کو آگے دیکھیں گے. نیکسٹ کوسچن, کیا ہوا خارج ہونے سے استنجا واجب ہوتا ہے؟ سم ٹائم انسان کے جسم سے گیس پاس ہوتی ہے تو کیا اس کے بعد پانی استعمال کرنا لازمی ہے؟ تو ہوا خارج ہونے سے استنجا واجب نہیں ہوتا کیونکہ ہوا پاک ہے. اس پر وضو اس وقت واجب ہے جب نماز کا ارادہ, یعنی عام طور پہ پھر آپ ہوا خارج ہونے سے ناپاک نہیں ہوتے. کیا سو کر اٹھنے کے بعد استنجا لازمی ہے؟ لازمی نہیں ہے, جب نماز پڑھنی ہوگی اسی وقت وضو کریں گے. اب بہت ہی اہم ایشو ہے ٹوائلٹ یوز کرنا, یعنی قضاء حاجت. اس کے لیے قرآن میں جو لفظ ہے وہ غائط آیا ہے. غائط, غائط کہتے ہیں غاتا سے گہری جگہ. عرب لوگ آج بھی دیہاتوں میں کچھ جگہ ایسا ہوتا ہے اسی طرح سے, زمین میں گڑھے کھودتے تھے اور اس کو قضاء حاجت کے لیے استعمال کرتے تھے, پھر پانی ڈالتے تھے, اسی سے لفظ پھر غائط نکلا. سوال پیدا ہوتا ہے انسان کو ناپاکی کیسے لاحق ہوتی ہے, یعنی کس کو کہیں گے ناپاکی؟ تو دو لفظ لکھ لیجئے, دو حصے. اللہ نے ہر انسان کی ایک جسم میں دو پارٹس جس کو ہم پرائیویٹ پارٹس کہتے ہیں, آگے کا حصہ جہاں سے عموماً یورینیٹ ہوتا ہے, اور پیچھے کا حصہ جہاں سے انسان پخانہ کرتا ہے یا سٹول پاس ہوتا ہے. ان دونوں رستوں سے ناپاک کب ہوتی ہے یا بندے کی پاکی کرنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے, کہ آگے یا پیچھے کے راستے سے جو گندگی خارج ہوتی ہے اس کی وجہ سے ناپاکی آتی ہے, یعنی پیشاب, پخانہ اور گیس پاس ہونا. اور گیس کا ایشو ہم نے آگے پڑھ لیا. سوال پیدا ہوتا ہے آگے اور پیچھے کے راستے خارج ہونے والی گندگی صاف کیسے کی جائے. نمبر ایک, اس طریقے کو استنجا کہتے ہیں. یعنی استنجا کیا ہے؟ جسم سے آگے یا پیچھے سے کوئی بھی چیز نکلے, اور آف کورس دو ہی چیزیں موسٹلی اس میں ہم دیکھتے ہیں, اس کو صاف کرنے کو استنجا کہتے ہیں. دوسرا طریقہ کہ ڈھیلے, مٹی کے ڈھیلے یا کاغذ, آج جس کو آپ ٹوائلٹ پیپر کہتے ہیں اس کو بھی سمجھ لیجئے گا, اس کو ایک خاص طریقے کے ساتھ سات ڈھیلے لے کر یا تین ڈھیلے, جس سے گندگی کا اثر ختم ہو. مثلا آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں پانی ہے ہی نہیں ہے, کیا کریں گے پھر آپ؟ صحابہ کرام یا عرب لوگ تو مٹی سے صاف کرتے تھے. اب آج کا سوال آپ کا اس میں جو ہو سکتا ہے وہ کہیں گے پانی نہیں ہے, پہلی بات ہے تیاری کر کے جائیں. اکثر میں ساتھیوں کو یہ مشورہ دیتی ہوں, آپ تو اس کی کئی فارمز بھی بن گئیں, چھوٹا سا آپ زپر بیگ رکھیے, سینڈوچ بیگ جو بچوں کے پاس آپ کے گھروں میں ہوتے ہیں, دو تین پرس میں ڈال دیجیے, اس کا وزن بھی نہیں ہے. کہیں پبلک ٹوائلٹ یوز کرنے گئے, کہیں بھی گئے, سنک سے اس کو بھر کے اوپر سے پورا زپر بند کر کے کونا کھلا رکھے, جب آپ یوز کریں گے بالکل یقین کریں وہ ایک لوٹا ہوگا, یوز کریں اس کو پھینک دیجیے. دس از دا بیسٹ وے یو کین ڈو اٹ. یہ بھی نہیں تھا, ٹوائلٹ پیپر لیجیے تھوڑا سارا, اس کو باہر صاف کر لی, پانی میں ڈپ کر کے لے جائیں, پہلے خشک سے صاف کر لیں اپنے آپ کو, اینڈ میں اس ٹوائلٹ کو دو تین دفعہ کر کے, تو انشاءاللہ, یعنی جب آپ کو خود فیلنگ آئے. اور آخری انتہائی صورت یہ بھی ہے کہ اگر پانی ہے ہی نہیں تو پھر ٹوائلٹ پیپر کو اتنی اچھی طرح سے یوز کریں کہ جو نجس یا گندگی یا جو لیکویڈیشن تھی وہ ختم ہو جائے, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول کرے گا. یاد رکھیں سب کا دین اتنا ہائیجینک نہیں ہے جس جو ہائیجینک ماحول میں ہم رہتے ہیں. سفروں میں آٹھ آٹھ دس دس دن صحابہ رہتے تھے, مہینوں کے سفر تھے, کہاں پانی ہوگا؟ تو وہ پھر اسی طرح یہاں سے دیکھیں کہ ہر قدرتی چیز کا علاج موجود ہے, جو بیسکس اللہ نے زندگی میں دیے ہیں اس کے لیے ضروری موجود ہے. نیکسٹ کوسچن کیا ہے, کہ استنجا کب واجب ہوتا ہے, یعنی مٹی کے ڈھیلوں سے یا پانی سے خود کو صاف کرنا کب واجب ہے؟ تو وہی سوال جواب ہے کہ آگے اور پیچھے کے راستے سے نکلے, ہوا کے علاوہ کوئی بھی چیز نکلے تو پھر اس وقت استنجا کرنا یا پھر مٹی کے ڈھیلوں سے اس کو کرنا استعمال ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی شرطیں کیا ہیں, یعنی جب آپ اس طریقے سے ناپاکی کی چیزوں کو نکالتے ہیں تو کیا ہے؟ پہلی بات ہے کہ جس چیز سے صاف کریں وہ بھی پاک ہو, ٹوائلٹ پیپر صاف مٹیریل کا بنا. اب اگر وہ بھی پک کی چربی یا کسی اور چیز سے بن گیا یا اس کے اوپر خود کوئی گندگی لگی ہوئی تو آپ کو اس سے طہارت حاصل نہیں ہوگی. پھر نیکسٹ تھنگ کیا ہے, اور یہ دلیل ہے صحیح مسلم 608 نمبر, دارقطنی 5656 ہے. نمبر دو وہ حلال ہو, تیسری بس صاف کرنے کی صلاحیت, ابزاربنٹ ہو. اب بالکل اگر آپ ویکسڈ پیپر کے ساتھ خود کو صاف کریں تو گندگی نہیں اترے گی نا, تو وہ ابزاربنگ ہو کہ وہ اس گندگی کو ابزارب کر لے. پھر اس کے بعد یہ کہ کھانے کے لیے استعمال ہونے والی چیز نہ ہو, مثلاً کھانے کے لیے کچھ چیز, یعنی آپ کھانا, مثال ہے آپ کہنے میں اچھا تو نہیں لگ رہا لیکن کریکرز کوکیز ایسی چیزوں سے خود کو صاف کرنا پڑے, ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے. پھر اسی طرح تین پتھر یا اس سے زیادہ ہو, کم از کم تین ہو, اور یعنی اسی لیے پھر ٹوائلٹ پیپر بھی یوز کریں تو تین دفعہ یوز کریں. یہ صحیح مسلم 607 608 اور بخاری 156 میں آپ یہ چیز جا کے پڑھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد نیکسٹ تھنگ کیا ہے کہ قضاء حاجت سے کیا مراد ہے. ہم جب بھی قضاء حاجت کرتے ہیں یا وٹ ایور جو بھی, تو وہ یہی ہے کہ آپ نے اپنی ضروریات پوری کی اور اس کے بعد آپ نے اپنے آپ کو صاف کر لیا. نیکسٹ ہے قضاء حاجت کرنے والے کے لیے کیا چیزیں مکرو ہیں, کیا نہیں کرنا چاہیے ٹوائلٹ میں. یعنی آپ کہہ لیجئے کہ جب ہم اپنے ضروریات کے لیے ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں اور اس کو استعمال بھی کر لیتے ہیں, تو وہاں جا کر گانے سننے چاہیے اور ناول پڑھنے چاہیے اور وہاں بیٹھ کر فون کے میسج چیک کرنے چاہیے. اب یہ بھی ٹو ان ون ہو گیا. بہت سارے لوگ ملٹی ٹاسکنگ ہونے کے لیے کہتے ہیں ہم واش روم کا وقت بھی ضائع نہیں کرتے. آپ دیکھ لیجئے نا کہ اب یہ ایشو میں آج سے 2 سال پہلے پڑھا رہی ہوتی تو میں نے کبھی نہیں تھا بولنا, تب تھا ہی نہیں. تو ورک کے ساتھ کیسے ایشوز آتے جا رہے ہیں. تو یاد رکھیے نمبر ایک, ایسی چیز جس میں کھلم کھلا اللہ کا نام لکھا ہو وہ واش روم میں یا ٹوائلٹ میں نہیں لے کے جانی چاہیے. ابو داؤد کی روایت ہے 19 نمبر کی. پھر باتیں نہیں کرنی, قضاء حاجت کے دوران باتیں گفتگو منع ہے, ابو داؤد 15. یا پھر مدرس کے ساتھ معذرت کے ساتھ خود اپنے بچے کو ٹوائلٹ سیٹ پہ بیٹھ کر, یا وہ جس کو پہلے دور میں ہم کیا کہتے تھے بچوں کے چھوٹے پوٹیز پہ بٹھاتی ہیں اور صاحب باتیں کرتی ہیں. اور ایسی بھی میں نے دیکھی جو نہ سمجھی میں ہوتی ہیں باتیں, بچے کو جو ہی چینج کرنے لگتے ہیں ہاتھ میں لولی پاپ پکڑا دیتے ہیں, وجہ کیا کہ اس کے بغیر وہ لیٹتا نہیں. اٹس ناٹ فیئر. دیکھیے اپنے بچوں کو, یہ جو اب ہمارا پیمپر سسٹم آ گیا اٹس ناٹ اے ریکمینڈیڈ سسٹم. سہولت ہماری ہے اس میں, بچوں کی سینسز ختم ہو جاتی ہیں. اب یہ میرا پسندیدہ ٹاپک ہے, یہاں نہ لیں تو بہتر ہے, لیکن دیکھیے ہر وقت دیتے کیوں ہیں کھانے کو. پہلی ماں نے 6 بچے پالے, ٹوائلٹ پہ ان کے پیمپرس ہوتے تھے نہیں ہوتے. بچے کو پہلے دن سے جس طرح ٹرین کریں وہ آگے تک ویسے ہی رہے گا. اور میں خود کئی بڑے لوگوں کی اتنی شستہ آتے دیکھ کر سمجھتی ہوں کہ ان کی ماں نے ان کو بچپن سے اس کی عادت ڈالی ہے. بچے کو فارغ کرواتے وقت نہ تو باتیں کریں, نہ اب ان کے ہاتھوں میں فون پکڑائیں. اب تو مصیبت یہ فونوں کی آ گئی, اور سوچا چلو پوٹی پہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہے کارٹون تو گناہ نہیں ہوگا, اور میوزک دیکھ رہا ہے. دیکھیے بچوں اس سے جلدی فارغ, اور آپ دیکھیں بچہ گھنٹہ گھنٹہ پھر بیٹھے گا, کرے گا ہی نہیں, وہ تو انوالو. آپ خود دیکھ لیں, آپ کوئی اور کام کرنے لگے, آپ کا آپ سائنس کیا کہتی ہے, آپ کہتے ہیں ہمارے جسم کی سب سے زیادہ انرجی کس کام پہ لگتی ہے, ایکسکریشنس پہ. باڈی سے ویسٹ کو ریموو کرانے میں ہماری انرجی کا, باڈی میں جو گلوکوز اور چیزیں آتی ہیں زیادہ حصہ جاتا ہے. فارغ ہو کے ختم کریں کام, یہ کوئی بیٹھنے کی جگہ, یہ کوئی جگہ دل لگانے کی ہے. تو ٹوائلٹس اب اتنے فینسی جو بنا لیے تو دل تو لگانا ہے ہم نے. اچھا مصیبت اللہ معاف کرے, واش روم کہیں یوز کرو اور تنجا جا کے کسی دوسری جگہ کرو, اور پہلے جا کے پورا نقشہ سمجھنا پڑتا ہے, شاور لینا ہے تو اس کھڈے میں گھسنا. اچھا یورپ والے یہ باتیں سمجھ کے مجھے کہیں گے کہ یہ پتہ نہیں کہاں کی باتیں کر رہی ہیں, لیکن یہاں والوں کو تو بہت سمجھ آ رہا ہے نا. پورا باتھ روم کا پہلے نقشہ سمجھنا پڑتا ہے, جو ڈور کھولے ہو سکتا ہے وہ کلوزٹ ہو, دوسری کھولی تو پتہ چلا جی کہ اس میں تو یہ باتھ روم کا نہیں, یہ تو کیا کہتے ہیں ٹاولز رکھنے کی جگہ ہے. اتنی دیر میں چاہے اپنا کام ختم ہو جائے. میک اٹ ایزی, لائف کو آسان بنائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین جگہ وہ ہیں, بیت الخلاء اچھی جگہ نہیں ہوتی, سمپل اینڈ بالکل ایسا رکھے کہ وہاں جا کر تھوڑی دیر کے بعد دل خط نہ لگے, اور پنکھے لگا لیے اوپر, اور اب تو ہیٹ لگ گئی, اور ہیٹ گرم سیٹ والی. ایسا بھی ہم سارے تجربے کر کے آئے ہیں نا سفر میں بھی, ہاں کہیں اوپر ہیٹ چل, اب اٹھنے کو کس کا دل کرے, آپ جائیں میں ادھر ہی اچھا ہوں, باہر تو بڑی ٹھنڈ تھی ادھر مجھے گرمی لگ رہی ہے. مسلمان ان چیزوں کے لیے نہیں بنا. تیسری بات, دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا منع, یہ تیسرا پوائنٹ ہے اس میں. یہ مسلم کی روایت ہے 613 نمبر, 613 نمبر. फिर इसी तरह इमारतों में कज़ाए हाजत के लिए जब जगह बनती है तो क़िबला रुख होना नहीं चाहिए। ये भी एक थोड़ा समझने वाला इशू है, यानी क्या टॉयलेट सीट का रुख क़िबले की तरफ हो सकता है कि नहीं, दिस इज़ अ क्वेश्चन। तो आप सही मुस्लिम की जाकर दो हदीसें पढ़ लें, 609 611, तो आपको समझ आएगा। खुलासा मैं कर देती हूँ, अल्लाह के नबी एक दफ़ा खुली जगह पर गए तो आपने इख्तमाम किया कि क़िबला रुख पर ना बैठें, लेकिन एक दफ़ा आप किसी दीवार की ओट, यानी जिसको वॉशरूम कह सकते हैं, टॉयलेट या रेस्ट रूम। अच्छा, ये लफ्ज़ रेस्ट रूम भी मैंने अमेरिका में आके पहली दफ़ा सुना, आज भी कभी बाहर जाके मैं बोल दूँ ना, कहते हैं अच्छा आपके घर में रेस्ट रूम है, कितना बड़ा, वो समझते रेस्ट रूम अंदर आप समझ गए मेरी बात, यानी रेस्ट रूम, जब मैंने फर्स्ट टाइम लफ्ज़ रेस्ट रूम सुना तो मैं समझी कौच लगी होगी साथ खिड़की, लेकिन बाहर वालों के साथ माजरत से कि अमेरिका में वॉशरूम्स को रेस्ट रूम्स कहते हैं, ऐसे ही ना। अब उससे फैंसेंस चेंज हुआ, कुछ और कहने लगे हम हैं, पाकिस्तान माश जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, हम भी अमेरिकनाइज हो गए, हमने उसको। अब देखिए लफ्ज़ रेस्ट रूम से क्या फीलिंग आती है, लेजी, खुजी, सॉफ्ट, फिर जी खुजी आ गई उसमें, फिर उसमें आपने वो चारों तरफ से सोना बात कर दिया, सारे ही नाम याद है ना आपको भी। याद रखिए कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है, इन चीज़ों पे दिल लगाने में कितना पैसा, और अल्लाह का घर बनाना हो तो कितना पैसा, ये है लगाने और देने का फ़र्क। आज आप करें कॉल किसी अल्लाह के रास्ते की, तो आपको मेरे हले अपने बाथरूम की टूटी जितना पैसा भी देना मुश्किल लगे, और जब हम अल्लाह के नाम पर नहीं, अपने और सहूलतों पे लग्जरियस लाइफ में रहें, तो फिर कैसे रहें। देखिए हराम हलाल तो दूर की बात है, एक बंदे के अपने दिल का भी हलाल हराम होता है, सबको जायज़ है, अल्लाह कह रहा है हलाल है, पर मैंने नहीं अपने ऊपर करना। बहरहाल आगे चलिए, और खुली जगह पे जाएं तो किबला रुख नहीं बैठना चाहिए। अब असूल ये है, कहीं टॉयलेट है ही ऐसी जगह पर, अब आप क्या करेंगे, मुश्किल में पड़ेंगे ना, तो बनाते वक्त इख्तमाम कर लीजिए, नहीं कर सकते तो इट्स ओके। फिर इसी तरह सुराखों और शिगाफ़ों में पेशाब करना मना है, क्योंकि अक्सर यहाँ जानवर कीड़े मकोड़े होते हैं, निसाई की रिवायत 34 है। हाँ, हर मकरूह चीज़ याद रखिए ज़रूरत के वक्त अलाउट हो जाती है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। कज़ाए हाजत करने वाले के लिए क्या चीज़ें नाजायज़ हैं, यानी ये तो वो जगह की बात थी ना, कि अब जो वहाँ इस चीज़ के लिए गया है तो उसको भी नोट कर लीजिए। नंबर एक, कज़ाए हाजत के ममनुआ मुकामात से बचना चाहिए, यानी जहाँ लिखा हो कि यहाँ फारिग नहीं हो सकते, दरख्तों के नीचे, मसलन आम गुजरगा रास्ते, पैसेजेस होते हैं जंगलों में, वॉक करने के ट्रेल बने होते हैं, इसी तरह सायादार और फलदार दरख्तों के नीचे नहीं। इसी तरह घाट, घाट क्या है, जानवर जहाँ से पानी पीते हैं, ये मुस्लिम की रिवायत है 618 नंबर की। फिर इसी तरह खुले मैदान में कज़ाए हाजत करने वाले के लिए किबला रुख होना हराम है, ये मुस्लिम की रिवायत 610। फिर कज़ाए हाजत करने के लिए ज़रूरत से ज़ायद बैठे रहना जायज़ नहीं। यहाँ फिर देखिए कि जब टॉयलेट इस तरह की सीट्स होती थी, जिसको आज भी लोग इंडियन शायद कहते हैं, इंडियन टॉयलेट, तो उसमें एक ख़ास वक्त से ज़्यादा बंदा बैठ भी नहीं सकता था ना, और बिलीव में जब तक वो थी घुटनों के और नीज के प्रॉब्लम नहीं थे, जब से ये आपने एक सोफ़ा कम बेड टाइप का आप देखिए ना, आजकल जो टॉयलेट सीट है वो कितनी रिलैक्सिंग है, आपके डाइनिंग टेबल की सीट और इसमें क्या फ़र्क है। और बिलीव मी, बात कहते हुए भी कराहत आ रही है, मुझे एक वीडियो की तस्वीर भेजी थी किसी ने, किसी मुल्क का रेस्टोरेंट है, पूरा रेस्टोरेंट इज़ बेस्ड ऑन टॉयलेट स्टाइल, कुर्सियाँ जो हैं जिस पे लोग बैठ के खा रहे हैं टॉयलेट्स हैं, वल्ला ही खाने के टेबलें आगे सिंक्स हैं, यानी एकदम जब मैंने तस्वीर देखी तो मैंने कहा ये, यानी वल्ला ही वल्गरनेस की हद है, जो चीज़ जिसके लिए शायद किसी ने मेरा दिल दुखाया, या उनको भी लगा कि मैं आगे बताऊंगी तो आपका भी दुखाऊंगी, फर्स्ट इंस्टेंट में मुझे ये लगा कि ये भी होने लगा है कि 10 कितने लोग होते हैं रेस्टोरेंट और सारे इकट्ठे फारिग हो रहे हैं, यानी टॉयलेट विदाउट वॉल्स, ये है वो बाद में पता चला नो इट्स नॉट अ टॉयलेट, हाँ जो का ये क्या है कि ये टॉयलेट नहीं है, ये रेस्टोरेंट है। देखिए ये शौखियाँ जो है ना, ये ईमान वाले को नहीं सचती, बहरहाल इससे भी गंदी चीज़ें दुनिया में आज मौजूद हैं जो यहाँ बैठकर कम से कम मैं आपको नहीं बता सकती। दुनिया ने अपनी चीज़ों को मार्केटाइज करने, सोशलाइज करने और लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए क्या हद दी है, आप में कोई मेरे से पूछेगा मैं अकेले में उसको बता सकती हूँ, मैं आपको यहाँ बैठ के नहीं बता सकती। कौन ना जाए उन रेस्टोरेंट्स में जहाँ ये गंदगी दिखाएं वो, तो बहरहाल अल्लाह माफ़ करे आपको मुझे। फिर अगली चीज़ जिससे दौरान इसमें बचना है वो क्या, छींटों से। पेशाब के छींटों से बचना चाहिए, मुस्लिम की रिवायत 6677, और इसी तरह से और भी रिवायतें हैं, आप कोई भी लिख लीजिए। क्वेश्चन, क्या जायज़ है टॉयलेट के दौरान, यानी ऐसे वक्त में क्या कर सकते हैं, लिख लीजिए जल्दी से। नंबर एक, बैतुल खला में जाते वक्त पहले बायां पांव रखिए और निकलते वक्त दायां पांव रखिए, ठीक है। दलाइल इसके भी हैं लेकिन इतनी कॉमन है कि आपको पहले से पता होगी। फिर टिश्यू पेपर के साथ इस्तंजा करना मना नहीं है, शर्त यह है कि वो आपके जिस्म से गंदगी को साफ़ कर दे, और बेहतर है कि ताक अदाद में इस्तेमाल करें। जब भी टॉयलेट पेपर यूज़ करें तो ताक में करिए, और फिर अगर पानी ना मिले तो इट्स ओके, इट्स अलाउड। तीसरी बात, बैतुल खला में जाने से पहले दुआ पढ़ें, बुखारी 142 इसकी दलील है। धोने या साफ़ करने में ताक का अदद का ख्याल रखिए, ये बुखारी 156 है। और ढेले इस्तेमाल करने के बाद पानी से भी इस्तंजा कर लें तो ये बहुत प्यारा है, मुस्लिम की रिवायत 619। कौन सी कौम थी जिसका जिक्र कुरान में है, उनको अल्लाह ने मुतहरीन में कहा, जब अल्लाह के नबी से पूछा गया तो कहा कि इसकी खूबी क्या है कि वो क्या करते हैं, इस्तंजा करने के बाद यानी ढेलों के इस्तेमाल के बाद फिर पानी भी इस्तेमाल कर लेते हैं जी, अहले कुबा। जी बिल्कुल, सूरह तौबा में इनका जिक्र है कि ये वो लोग थे कि जो ये सब करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये थोड़ा सा एक समअप हुआ। मिसवाक पे चंद जुमले, मिसवाक क्या है, यानी लकड़ी को नरम करके उससे दांतों को साफ़ करना, ये मिसवाक है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। 244 बुखारी, इसकी अहमियत क्या है, तो बुखारी की दलील आपके सामने है 887, कि आपने फरमाया अगर मुझे अपनी उम्मत की तकलीफ़ का एहसास ना होता तो मैं हर नमाज के लिए इनको मिसवाक का हुक्म देता। तो मिसवाक ज़ाहिर अच्छी बात है। किन सूरतों में मिसवाक की आपने ताकीद की है, यानी कब कब मिसवाक की जा सकती है, सिर्फ ये मतलब मुराद ये है। तो नंबर एक, नमाज के लिए, मुस्लिम 610। तिलावत कुरान मजीद के लिए भी मिसवाक है, यहाँ आने से पहले भी करके आया करें, 596। तीसरी बात, वुज़ू से पहले, अबू दाऊद 57। अब नमाज और वुज़ू में क्या फ़र्क है, जब वुज़ू किया तब तो मिसवाक की, लेकिन सम टाइम फिर एक वज़ू से दो नमाज़ें भी हैं, तो जब नमाज़ पढ़ने लगें थोड़ी सी उससे पहले मिसवाक कर लीजिए। चौथी चीज़, सुबह उठने के वक्त बेदार होने के बाद, ये मुस्लिम 595 और 593। फिर मुंह का मज़ा बदलने की सूरत में, सम टाइम बंदे का ज़ाहिर बास आने लगती है रोज़े की हालत में, वट एवर, जब भी, तो भी इब्ने माजा 291। और मस्जिद और घर में दाखिले के वक्त मुस्लिम 590। ये है इस्लाम तहारत का दिन। मस्जिद में जाएंगे तो किसको स्मेल ना आए, नंबर एक साथ के नमाजी फरिश्ते, और घर में जाएं तो किसको ना आए, घर वालों को ना आए। यहाँ से अब आप देखिए कि जिनके मुंह से बू आती है और कई किस्म के धुओं की बू आती होगी, फिर वो किस हुक्म में आते हैं। फिर नेक्स्ट है कि कोई ऐसी फजीलत है मिसवाक की कि जिससे हमारा दिल करे कि हम ज़रूर करें मिसवाक, तो अल्लाह के नबी की दो तीन हदीसें नोट कर लीजिए। आपने फरमाया कि मिसवाक मुंह की तहारत और रब की रज़ा है। क्या फरमाया, कि मिसवाक है मुंह पाक हो जाता है, अल्लाह की रज़ा है। ये सही तरगीब 209 नंबर है। फिर फरमाया, बिला शुबा बंदा जब मिसवाक करता है फिर खड़ा होता है और नमाज़ पढ़ता है तो इसके पीछे फरिश्ता खड़ा हो जाता है और इसकी किरत सुनता है और इसके करीब होकर खड़ा होता है, हत्ता कि वो अपना मुंह इसके मुंह के ऊपर रख देता है, फिर कुरान का जो हिस्सा इसके मुंह से निकलता है फरिश्ते के पास चला जाता है। लिहाजा तुम कुरान के लिए मिसवाक के ज़रिए अपने मुंह को पाक करो। ये सही अल तरगीब की रिवायत 215, यानी फरिश्ते को भी आपका कुरान सुनने में मज़ा आ रहा होता है, बदबू आएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। सवाल ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब करते थे मिसवाक, आपका मामूल क्या था? तो पहली बात है कि आपकी मिसवाक हमेशा आपके सर के करीब होती थी, जैसे अक्सर पढ़े लिखे लोग यहाँ कलम नहीं टूंग लेते, कभी देखा है पहले दौर के अंकल्स मुंशी टाइप जो जहन में आता है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कलम मिसवाक आपके इधर कान के पीछे होती थी, समझ आ रहा है, जैसे आप उसको होल्ड करें। फिर जब बेदार होते तो मिसवाक शुरू करते, ये सिलसिला सहीहा की रिवायत है 2111। रात को उठते वो तो मिसवाक करते, बुखारी 2452। घर में दाखिल होते तो सबसे पहले मिसवाक करते, मुस्लिम 253, अबू दाऊद 51। और मिसवाक के बगैर किसी नमाज के लिए घर से नहीं निकलते थे, मजमा ज़वायद 99 जिल्द नंबर 2। तो क्या पता चला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से मिसवाक करते थे। क्या सुन्नतें क्या हैं मिसवाक करने की, सुन्नतें नंबर एक, किसी भी दरख्त की लकड़ी से कर सकते हैं, पीलू की लकड़ी से मिसवाक मुस्तहब है। पीलू एक दरख्त होता है, येलो सी ज़रा उसकी होती है। ये मुसनद अहमद की रिवायत 420 है, पहली जिल्द में। दाई जानिब से शुरू करें। अब अगर मिसवाक है पास नहीं, ये मुझे पेन दें ज़रा, मेरे पास होती है लेकिन अभी टाइम नहीं है हमारे पास। एक बस कोई भी पेन दें। आप देखिए कि आप सपोज कीजिए कि ये मिसवाक है, करनी कैसे, कई लोग मिसवाक करने में दांत ही छील लेते हैं अपने। तो आप देखिए दाई तरफ, जैसे हमारे मुंह की ये दाई साइड है, इधर से सुनते थे और इस तरह, ये जो है ना इसको यूं, ये मैं हैरान होगी जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना। बिलीव मी, किसी डेंटिस्ट को देखिए, आपके जो मसूड़े और दांत है ना, इसका जो ऊपर मसाला है, एग्जैक्टली उसकी सूरत में करते थे, यहां से यूं और यहां से यूं, राइट साइड से यूं करते, फिर ये जो आगे का जोफ है ना, इधर यूं और फिर इधर। ये मिसवाकत सीधी से शुरू करें, बीच में ऐसे और वो, फिर उसके बाद जाहिर है कि मुंह के अंदर के हिस्से से भी किया जा सकता है। फिर इसी तरह से हसब इस्तेआत अपने सारे काम, मसलन वज़ू करना, कंघी करना, जूता पहनना, आप दाई तरफ से काम शुरू करते और दूसरे को पसंद करते थे। यह अबू दाऊद की रिवायत है 41140, यानी ये हदीस का रेफरेंस है। फिर क्या पता चला कि मिसवाक करनी चाहिए? क्या रोज़ेदार मिसवाक कर सकता है? देर इज़ अ साइड क्वेश्चन, यस कर सकता है, और उसके लिए कोई बुरी बात नहीं। बाज़ लोग कहते हैं कि वह हज़रत मूसा को अल्लाह ने 30 की बजाय 40 रातें इसलिए रोक लिया कि मूसा ने मिसवाक कर ली। गलत बात है, मिसवाक किसी वक्त भी की जा सकती है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को पसंद किया है। अब सवाल पैदा होता है कि आज हमारा मुस्लिम कल्चर, आप देखिए अगर उसको देखें तो फिर ये चीज़ आज हमारे पास कम दिखती है। तो बहरहाल मिसवाक की आदत डालनी चाहिए, किसी भी तरह से कर सकते हैं, लेकिन यह है कि जब सुनना समझ के करेंगे। और एक क्वेश्चन जहनों में आता है जो लोग पूछते हैं कि फिर पेस्ट ब्रश की क्या हुक्म है? ये क्वेश्चन है, कोई गुनाह नहीं है। ब्रश अगर आपका वो पिक के बालों से नहीं बना हुआ, ब्रश कर सकते हैं। सुबह उठ के पहले मिसवाक कीजिए, सुनना समझते हुए तहारत कीजिए और उसके बाद ब्रश फेस कर लें। दिस इज़ वन सूरत। दूसरी क्या है कि मिसवाक करते हुए उसी के आगे थोड़ी सी पेस्ट लगा लें, नेचुरल ब्रश है बिलीव मी, यानी पेस्ट यही यूज़ करें जो आप करते हैं, ब्रश की जगह पर मिसवाक लगा लें। दैट इज़ द थिंग। आप कहेंगे फिर वो तो प्योर और इम्प्योर चीज़ या सिंथेटिक चीज़ मिल गई, तो वो सिंथेटिक चीज़ भी तो चीज़ों से मिली है। तो होपफुली जो असल हुक्म है उसकी रूह को आप समझ गए कि मिसवाक करनी चाहिए। ठीक है, एनी क्वेश्चन, एनी थिंग? वो किधर है इबादत ट्रैकर? इसी शीट्स में ही है जी? नहीं नहीं जी, कोई क्वेश्चन आप कीजिए जी। देखिए मिसवाक करना और इसको देखना भी एक बड़ी ट्रिक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो गलत तरीके से इस्तेमाल करें तो बल्कि फिर लोग मिसकॉन्सेप्शन में आते हैं। पानी में भीगी रखेंगे तो स्मेल पैदा हो जाएगी। मिसवाक को जब रखें तो उल्टा करके रखें। आपके पास कोई ऐसा होल्डर है जिसमें पानी निचुड़ जाता है जब मिस, ये दिए सबको चेक करेंगे बस, है ना? दे दीजिए जल्दी से जी।
पानी में और बाहर जिंदा रहता है, तो लाइक फ्रॉग और वो क्रैब्स एंड
देखिए मैंने आपको बताया ना कि इसमें और भी थोड़ी सी डिटेल्स हैं, लेकिन फ्रॉग हलाल नहीं है, ये समझ लें। अच्छा जी, ये आप सबके हाथ में इस वीक की एक शीट आ रही है, इसका नाम है माई डेली सलाह एंड इबादा ट्रैकर। देखिए हम सब क्यों पढ़ रहे हैं ये, कुछ आदतें पुख्ता करनी है ना, और जब दुनिया में अपना हिसाब खुद बना लेंगे तो फिर आखिरत में आसान होगा। हासिबु कबलन तो हासिबु, आप कह लीजिए जस्ट लाइक फॉर रिलैक्सेशन, दिस शीट इज़ पार्ट ऑफ योर अमालनामा। फरिश्ते पता नहीं किस कागज़ पे बनाते हैं, किस रंग का उस पे लिखते हैं, हम सब की बन रही है ना। कुल इंसानिन अल्ज़मनाहु तायरहु फ़ी उनुके व नुख़रिजु लहु यौम अल-क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा। कहाँ है यह आयत? सूरत बनी इसराइल 12 है या 13 है, दोनों में से कोई एक होगी। ठीक है, अब आप मैं इस पूरे कोर्स में क्या अपने दिमाग पे सिर्फ बोझ दें? क्या रहा बाद में, जो वो क्या हलाल था, क्या हराम था, नजासत क्या, वो 0.2 रह गया और 6 रह गया, ये मकसद तो नहीं है ना। इल्म क्यों लेते हैं हम? अमल के लिए, हशियत के लिए, ठीक है ना। हिफ्स क्यों करते हैं हम? ताकि बर मौका आए तो याद आ जाए जब भी उस पर। तो असल चीज़ अमल है। अब आपका मेरा काम क्या है कि हम अमल करें। आज चूंकि हमने इबादत का टॉपिक शेयर किया है, शुरू किया है, और इंशाल्लाह ये चलता ही रहेगा। आज कुछ फ़ायदा हुआ? ज़्यादा तो नहीं हो गया? आप देखिए कि साउंड नॉलेज, सॉलिड चीज़, बगैर किसी लगी लिपटी के भी करें तो आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है ना, आज इसकी ज़रूरत है। लच्छेदार बातें और मिलाद और रबी अव्वल के प्रोग्राम और ये तो हमारी उम्मत का टेस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े शौक से करते हैं। लेकिन आप इधर किसी ऐसे बंदे को बुलाएं जो कभी किसी क्लास में नहीं आया, तो मेरे लिए वो सो चुका होता या सो गया होगा अगर कोई होगा भी। तो ये चीज़ें आपके मेरे अपने अमल की हैं। ये शीट आप ज़रा खोलें, मैं आपको थोड़ा इसको सिखा दूँ कैसे करना है। सबसे ऊपर आयत लिखी हुई है, कुल इन्नस्सलाती व नुसुकी व महया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सूरह अलनाम 162 है। आपने इसके नीचे इसका तर्जमा अपने प्यारे प्यारे हाथों से लिखना है। वो किसके हैं प्यारे हाथ? आपके हाथ हैं। लिखेंगे और जब लिखेंगे तो हर लफ्ज़ को लिख कर सोचना कि इसका मतलब क्या है। और वही बात जो अभी सुबह भी अतीक ने बोली ना कि फिल्लाही लिल्लाही बिल्लाही, जब तक सब कुछ नहीं होता अल्लाह की तरफ बात ही नहीं बनती। यही है असल में ला मकसूद इल्लल्लाह, ला मौजूद है इल्लल्लाह, यानी हमारी ज़िंदगी खुदा रुखी कब होगी। फिर इसमें अगर आप इधर से लेफ़्ट साइड से देखें तो आपको एक बार दिख रहा है, उसमें कुछ स्पेशल बोनस प्राइस हैं। मसलन फॉर मेकिंग फ्रेश वुदू फॉर ईच सलात आपको एक स्टार मिलेगा अगर आपने किया। फॉर यूजिंग मिसवाक एक स्टार है। फास्टिंग ऑन मंडे एंड थर्सडे 2 स्टार्स हैं। फॉर अटेंडिंग जुम्मा खुतबा 1 स्टार है। और पूरे वीक में अटेंडिंग क्लास ऑन टाइम 5 स्टार है। यानी यू विल बी ट्रीटेड एज 5-स्टार कस्टमर इफ़ यू विल बी हेयर ऑन। आज से इस चीज़ को जहन में रखें, 1 सेकेंड भी अगर आप लेट आते हैं तो स्टार छोटे हो जाएंगे। ठीक है, आप देखिए कि आपने इन 7 दिनों की चेकलिस्ट में करना क्या है। नंबर 1 वेकिंग अप रूटीन, सुबह जागे कब। नंबर 1 कब जागे और क्या वो जिस वक्त जागे वो सुन्नत के मुताबिक ठीक था, यानी नमाज का वक्त आगे पीछे तो नहीं हुआ। दूसरी बात तहज्जुद कब पढ़ी और कौन सी सूरत पढ़ी, अपने लिए लिखिए, इससे फ़ायदा होगा आपको। फजर किस वक्त पढ़ी, कौन सी सूरत फजर में पढ़ी। मॉर्निंग अस्कार पढ़े के नहीं पढ़े, ये वाइट हिस्से में चेक लगाएंगे आप। फिर इशराक की नमाज जिसको चाश्त भी कहा गया, किस वक्त पढ़ी और कौन सी सूरत पढ़ी। ज़ोहर किस वक्त पढ़ी, कौन सी सूरत पढ़ी। असर किस वक्त पढ़ी, कौन सी पढ़ी। असर के बाद से लेकर एनी टाइम इवनिंग अस्कार पढ़ सकते हैं, पढ़े के नहीं पढ़े उसको चेक कीजिए। मगरिब कब पढ़ी, क्या सूरत पढ़ी। इशा कब पढ़ी, उसमें कौन सी सूरतें पढ़ी। और स्लीपिंग रूटीन, क्या सूरत सजदा और मुल्क और जो रात के सोने के अस्कार थे वो पढ़े के नहीं पढ़े। कोई नई चीज़ तो नहीं है ना इसमें, हम बचपन से ये सीखते आए ना। आपने इसका पूरा ट्रैकर पूरा वीक बना कर ये शीट सबमिट करानी है। अच्छी नहीं भी होगी ना तो अगले वीक की शीट अच्छी होगी। देखिए ये बन रही है आपकी मेरी, और इंशाल्लाह पिछली भी और अगले भी सेशंस की हम बनाते रहेंगे। और इससे फिर फ़ायदा क्या होगा कि हम सब बदल जाएंगे। कौन कौन बदलना चाहता, अल्हम्दुलिल्लाह। तो खड़े हो जाएं सारे, अपनी पोजीशन बदलें। चलें जी ये ले शाहें, इनको बिस्मिल्लाह कराएं। 2-3 मिनट तिलावत कोई भी चला दें, कुछ भी थोड़ा सा रिलैक्सिंग।
एक दूसरे के एक साथ अलग से नहीं मिलेगा। बिस्मिल्लाह खत्म करें। बिस्मिल्लाह बैठ जाइए, खड़े जाइए। बहुत सारी चीजें हमारे दिन की, कितनी प्यारी प्यारी चीजें जी। Prerequisite ibadat ki acceptance ka ji, jo Allah aur sunnat ke mutabiq ho, aasan zindagi, paak zindagi. Kahin par kisi class mein maine suna, maine kaha ki aap shower ka pani ghanton bha lijiye lekin aap clean to ho jayenge lekin paak nahi honge. Ye concept humko samajhne ki zarurat hai na. Cleanliness and purity are two different things, theek hai na ji. Hame dusron se hum task karte hain, dusre mazaan alhamdulillah. चलिए रिलैक्स हो गए, कुछ और करने,
स्टोरी टाइम।
स्टोरी टाइम।
الحمدللہ. مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ترتیب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تھی کہ ہم پہلے حصے میں اتنا کچھ پڑھتے ہیں اسلام پہ اور پھر ہم ان شخصیات کو پڑھتے ہیں جو واقعی اس کا عملی نمونہ تھی. تو یہ ہے اصل میں تھیری کے ساتھ پریکٹیکل. آج کی شخصیت کون ہے؟